ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में नित्य प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष उपनिषद ज्ञान यज्ञ प्रस्थानांतर ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद सामवेद के अंतर्गत तो छांदोग्य उपनिषद का प्रवचन आरंभ के पहले ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमप्री महर्षि के द्वारा रचिता ब्रह्मास्मि माला इसका पांच श्लोक का पाठ करना। विवेच्य भूतिपूर्णं तद विचार्य चितिपूर्णकं विलोक्यानंदपूर्णं तद जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः विद्या विद्या विरोधेपि स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तया तस्यास्तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम् एव दह्यते दारु रज्जुना वध्यते पशु न संकिन्त्वन्तरात्मा तु सोहं ब्रह्मास्मि चेतन नश्यति हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकं नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृत् सत्त्वं ज्ञानं सुखं सत्त्वं स्वातन्त्र्यं चेष्टामतो लिप्सा स्वाभाविकी तस्या मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते। ब्रह्म विद्या के प्रारंभ में छांदोग्य उपनिषद सामवेद के अंतर्गत में पहले प्रारंभ हुआ ओम इत्येतद् उद्गीतम्। ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासितम्। यह ओम अक्षर साम के भाग उद्गीत के एक अंश ओंकार को उद्गीत शब्द से कहा गया। उद्गीत की उपासना ओंकार की उपासना, उपासना करते समय उपास्य के गुण चिंतन करके उपासना करनी होती है। सगुण की उपासना करेंगे तो गुण चिंतन करना है, निर्गुण की उपासना करना है तो गुणों का निराकरण करना, अस्थूलम अननुम दीर्घम ये सब गुण का निराकरण करके। यहां सगुण ब्रह्म दृष्टि से चिंतन करना है, ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करना। यहां गुण चिंतन करने के लिए तीन गुण कहा, पहले कहा आप्ति, पहले रसतमत्व, रसतम आप्ति समृद्धि, तीन रसतम गुण आप्ति गुण, आगे कहेंगे समृद्धि गुण वाले यह ओम अक्षर इसकी उपासना है। आप्ति गुण का फल बताया, जो जैसे उपासना करता है ऐसे फल होता है। मुद्गल उपनिषद में आया तम यथा यथो उपासते तदेव भवति, जिस जिस गुण चिंतन करके उपासना करता है वही फल प्राप्त करता है। तो फल कामना से करने से फल की प्राप्ति होती, और जितने उपासना है कर्म है वेद विहित कर्म उनका अनुष्ठान करने पर निष्काम होकर करे तो ज्ञान प्राप्ति का साधन। सकाम अनुष्ठान करते समय विधिवत करना होता है, विधि में कोई भी त्रुटि नहीं हो तब कामना की प्राप्ति होती है। निष्काम अनुष्ठान करते समय यथा संभव विधिवत करे, किंतु कुछ यदि व्यतिक्रम हो जाए कुछ नहीं हो पाया तो हानि नहीं है, फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए कुछ पाठ करते समय व्रत लेते समय नियम लेते समय निष्काम करे तो को भय नहीं है, सकाम करे तो पाठ उच्चारण शब्द विधि विधान सब ठीक ठीक होना चाहिए, ठीक ठीक नहीं हो तो फल नहीं मिलता है। और निष्काम करने पर कोई भय नहीं, यथासंभव श्रद्धा से पाठ करते समय त्रुटि हो जाती है, बहुत जानने वाले भी पाठ करते समय उच्चारण में गलती हो जाती है, निष्काम करने पर भय नहीं, और जितने संभव हो सकता है त्रुटि नहीं हो, शुद्ध उच्चारण हो, मंत्र का जप करते समय भी शुद्ध उच्चारण हो ये भी ध्यान देना चाहिए। अभी ओंकार के अक्षर में एक और गुण चिंतन करते हैं, ये होता है रस, आगे समृद्धि, सम्यक रिद्धि समृद्धि, वृद्धि को अधिक प्राप्त होने से व्यक्ति समृद्ध होता है। ज्ञान से कोई समृद्ध होता है, धन से कोई समृद्ध होता है, गुण से समृद्ध होता है, उदार होता है। ये ओंकार अक्षर में समृद्धि गुण चिंतन करे, समृद्धि गुण विशिष्ट यह ओंकार है। तद्वाये तद अनुज्ञा अक्षरम यद्धि किंचानुजानत्योमेव इत्येव तदा हेश ओ एव समृद्धि यद अनुज्ञा समर्थयिता हवैकामानं भवति य एतदेव विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। तद वै एतद अनुज्ञा अक्षरम, तद अक्षर जो कहा गया है ओंकार अक्षर वही प्रसिद्ध है, ऐसा सर्वत्र प्रसिद्ध है, शास्त्र में प्रसिद्ध है और सामान्य लोक में प्रसिद्ध है। तो अनुज्ञा अक्षरम, अनुज्ञा अनुमति, कोई कुछ कहते स्वीकार करना, स्वीकृति, ये अनुज्ञा अक्षर लोक में अभी प्रसिद्ध ओंकार के स्थान पर हाँ हूं ऐसे कह देते। ओम इति शास्त्र में आता है कति देवा इति त्रयस्त्रिंशदिति ओम इति होवाच, इसमें आगे आएगा बृहदारण्यक में आएगा। जब स्वीकार करते हैं कहीं ओम इति ओम ओम मतलब स्वीकार कर लेना। ये अनुज्ञा अक्षर क्या हुआ, कोई मांगता है याचना करता है मुझे कुछ उपदेश कीजिए, विद्या प्रदान कीजिए, ओम ठीक है हम करते हैं। कोई कहता मुझे कुछ धन सहायता चाहिए दीजिए, ओम ओम कहते मतलब स्वीकार कर लेते हैं। कौन ऐसे ओम कहेगा स्वीकार करेगा, ये स्वीकार स्वयं समृद्ध होगा तो कर सकता है, धन पर्याप्त है दे सकता है तो कहेगा ओम, और ज्ञान देने के लिए ज्ञान अपने पास है कोई कहेगा तो हम दे सकते तो कहेगा ओम। और ये सामान्य बात उसको दूर में रखना, जो ये नहीं जान करके कहेगा हम अब तुमको हम उपदेश कर देंगे, स्वयं साधना भजन कुछ नहीं करके हम कहेंगे कि आ जाओ हम सबको परमात्मा का दर्शन करा देंगे, अंधे ने एवं नियमाना है तांधा, ऐसे करने वाले हो तो बहुत आसुर प्रकृति, उनको दूर में रखना। वस्तु तो जो है दे सकते हैं, वे कहेंगे ओम सत्य करते धन चाहिए दे सकते ओम। और ये ही होता है अनुज्ञा अक्षर, ये उत्कर्ष है, जहां समृद्ध है उत्कर्ष है वही दे सकता है कह सकता है, कोई मांगता है ऐसा न करता है ठीक है, सामान्य कोई कुछ कहता है ठीक है दे दो कुछ, दे देने से हानि नहीं होती है, दान करने से हानि नहीं होती है। अरे विद्या दान से दे बिल्कुल हानि का प्रश्न ही नहीं, धन दान में हानि हो सकती है, किंतु जो आपके प्रारब्ध में इतने आप भूखर से इतने मिलेगा, दे दिया तो कम नहीं होगा, आपके प्रारब्ध में तो आपको मिल जाएगा, अब प्रारब्ध नहीं तो नहीं देने पर ही कोई लेकर जाएगा भाग जाएगा नष्ट हो जाएगा चोर ले लेता है। अच्छा सब होने पर ही भोग नहीं कर पाते हैं, यदि आपके प्रारब्ध नहीं भोग करने के लिए धन संपत्ति बहुत होने पर भी उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, बहुत नहीं ले पाते हैं, सामान्य है कुछ बीमारी होता तो खाने के लिए सब कुछ ही खाने के लिए मना कर ये नहीं खाना वो नहीं खाना, न घी नहीं लेना नमक लेना, कोई कुछ कहेगा आलू नहीं खाओ कोई मीठा नहीं खाओ, कितने डॉक्टर लोग बताएंगे धन संपत्ति क्या करेगी। तो ऐसी प्रकार खाले खाद्य के लिए नहीं, सब प्रकार भोग के लिए भी यदि अपने प्रारब्ध में नहीं तो भोग नहीं होता है, और धन दान कर दिया अधिक दे दिया तो भोग नहीं कर पाएगा, वो नहीं आपके प्रारब्ध है तो आपको भोग मिलेगा, अब प्रारब्ध नहीं तो धन संपत्ति होने पर भी भोग नहीं कर सकते, इसे देने से हानि जो कहते नहीं, आपके पास आया आपने पहले दिया था तब आया, आपके पास अभी धन संपत्ति आई किस लिए आई, ऐसे ही नहीं कि खाली आ गई आपने पुरुषार्थ कर धन कमा लिए, ठीक है पुरुषार्थ आपने किया, पुरुषार्थ करना होता है, प्रारब्ध कर्म पुरुषार्थ करा देगा किंतु सफलता कौन देगी, वो भी प्रारब्ध कर्म, आपके कर्म प्रारब्ध कर्म भी सफलता को देती है, पुरुषार्थ करने पर भी सब लोग समान प्राप्त नहीं होता है प्रसिद्ध है। तो धन और विद्या दान से कभी प्रश्न ही नहीं, हानि की वृद्धि होती है, एक विद्यारूप संपद है, यही संपद है जो दान करने पर भी बढ़ती है, विद्या वृद्धि ह्रास नहीं होता है, जितने उपदेश करे तो इतने ज्ञान बढ़ता है, बोलते बोलते स्पष्टता और होती है। तो ये जो कहता है भाष्य में आया कोई धन अथवा ज्ञान याचना करता है तो जो समृद्ध है संपन्न है उदार है कोई ओम ठीक है ओम कर दे कुछ दे दो, और कुछ लोगों का ऐसा अभ्यास करना भी चाहिए, कुछ रखे हमेशा कुछ देने के लिए, दान करने के बाद चलते हैं मांगने वाले मांगते हैं कुछ दे दे, खाली हाथ नहीं कुछ दे दो, कोई मांगता कुछ दे दो, यही देखा है कभी साथ में गए रास्ता में पास में दूध है कोई नहीं भी दूध रखो रास्ता में दे देंगे, अपने हम नहीं पी पाते हैं, कभी पीने कहीं मना कर दो, कहता नहीं पी गए, वो कहता नहीं इच्छा नहीं, अब कोई बात नहीं ले लो बटोले में भर दो। रास्ता में गए कोई आकर के महिला बच्चे रखे करके मांगते तो उसको दे दिया और तुरंत देते ही बच्चे को पकड़ा दिया, बच्चे पीने लग गया तो कितना अच्छा लगता है। और वो दूध यहाँ कोई पीता नहीं, कोई कहता नहीं पी इच्छा नहीं, वो कहता है जी नहीं इच्छा नहीं, और उसको ले ले रख लो ले दे दिया और खुश होकर बच्चे। अच्छा कभी खाद्य अन्न दान करने के लिए अधिकारी की विचार नहीं का चिंता नहीं करना है। कौन अधिकारी? जो बुभुक्ष है, जो खा सकता है वही अधिकारी है। यदि खाता है, खा लिया अन्न दिया, वो क्या करे? खाना खाद्य ग्रहण करता है तो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, बच्चा हो, ब्राह्मण हो, अब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी को भी देना है, पशु पक्षी को भी, पेड़ पौधे को भी देना होता है, पानी से जल सिंचन करना होता है, आवश्यक है। कहीं भी किसी यदि पेड़ पौधे को जल सिंचन कर लिया, परमात्मा प्रीत होते हुए परमात्मा दृष्टिया करो, कहीं भी पेड़ पौधा के नीचे थोड़ा जल सिंचन करो, प्रणाम करो, प्रणाम नहीं करो जल सिंचन करो तो भी। और पशु पक्षी को भी अन्न देना होता है, इसलिए अन्न दान करने के लिए अधिकार। धन देने पर धन का दुरुपयोग कर सकता है, अन्न का दुरुपयोग क्या करेगा? अन्न खाएगा ना, किसको किसको देगा? तो ऐसे अन्न उसको दे खिला दिया। तो ये ओम ये जो अक्षर है इसको कहते अनुज्ञा अक्षर, अनुमति का अक्षर, अनुमति सूचक ओम मतलब अनुमति, जैसे लोक में हाँ करते हाँ ठीक है हूँ ऐसा करते अनुज्ञा अक्षर। यद्य किंच अनुजानाती ओम इतव तदा आह, तद आह जब अनुमति देता है कहता ओम इति तद आह कहता है, जब अनुजानाते अनुमति करता देता है हाँ ठीक हाँ, है दे रहा हूं। जो उधार है कोई कहा कर मैं आपका धन ले लेता हूँ, ये चीज मैं आपका ले लेता हूँ, ये पेना कलम आपका मुझे चाहिए ठीक है ले लो, ये चीज अच्छा है अच्छा मैं लेता हूँ ले लो, कुछ धन मुझे उपदेश कीजिए, कुछ भी मुझे पढ़ाई ठीक है हम पढ़ा देंगे। तो ये अनुज्ञा अक्षर है ओम इति ये सब एवं समृद्धि यद अनुज्ञा, जो अनुमति यही समृद्धि है, क्योंकि समृद्ध हो संपन्न हो तभी तो अनुमति देश होता है, देश देने के राजी होगा, अपने पास नहीं तो किसे देगा, इसलिए यही समृद्धि है जो अनुज्ञा अनुमति, जो अनुमति स्वीकार करता है देने के राजी हो जाता है, देने के पहले भी स्वीकार कर दिया मैं दे रहा हूं, इतने मात्र से ये समृद्धि ये उदारता है। समर्थयता हवे कामान भवती ये तद एवं विद्वान अक्षरम उद्गितम उपासते, जो इसे विद्वान उपासक अक्षर उद्गित की उपासना करता है उसको उपासना के अनुरूप फल प्राप्त होता है। कामानाम समर्थयता काम प्रापकता, यदि ऋत्वी को उपासना करता है यजमान को कामना की प्राप्ति करा देता है, जो क्या तुम कामना करते हो क्या चाहते हो उसके अनुसार उद्गान करता है, काम गान मंत्र बोल करके कहता है, तो कामाना समर्थयता प्रापकता काम प्रापकत्व यजमान को फल दे देता है विद्वान जो उद्गित उपासना करता है। तेनेयं त्रयी विद्यावर्तत ओमित्याश्रावयत्वोमिति संशत्योमिति उद्गादयते तस्य अक्षरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन। अभी अक्षर की स्तुति ओम इस अक्षर की स्तुति करते हैं, क्योंकि उपास्य जो उपास्य उसकी स्तुति करने से रुचि होती है, और उपासना करना स्तुति ही करना महत्व उत्कृष्ट ऐसे भावना। तेन इयम त्रयी विद्यावर्तते तेन अक्षर है ना, ओम अक्षर जो उद्गित नामक अक्षर है इससे त्रयी विद्या, त्रयी विद्या ते वेद त्रय ऋग्यज साम, तो सारे वेद के वेद विहित कर्म वैदिक कर्म करने के लिए वैदिक मंत्र पाठ करना होता है, और कोई भी मंत्र पाठ करेंगे तो ओंकार से प्रारंभ किया जाता है, इसे सारे वैदिक कर्म ये ओम इत अक्षर से ही होता है संपन्न होता है। त्रयी विद्या विहित कर्म ओम के द्वारा ही संपन्न होता है, इसलिए ओंकार अक्षर इतने उत्कृष्ट है, इससे ही प्रारंभ होता है सारे कर्म वैदिक कर्म सब कुछ, क्योंकि ओम इति आश्रावयति मंत्र श्रवण कराने के लिए कहता ओम, ओम इति संशति स्तुति करता है तो ओम कहकर स्तुति करता है, ओम इति उद्गादयति उद्गाता सामवेदिक ऋतु जब गान करता है ओम कहकर उद्गान प्रारंभ करता है, तो कोई भी मंत्र बोलते समय ओम कहकर के प्रारंभ होता है, सारे वैदिक कर्म ऐसे वेद विहित मंत्र के द्वारा अनुष्ठित होता है, तो ओम इस अक्षर के द्वारा वेदत्रय विहित कर्म सब संपन्न होता है, इतने श्रेष्ठ है। सोमयाग अश्वमेध याग आदि बड़े बड़े याग सब कुछ ओम इस अक्षर से ही आरंभ होता है। ये जो ओम कह करके कर्म होता है एतस्य अक्षर से अपचित्यव ये पूजा के लिए ओम कह करके मंत्र आरंभ करके कर्म करते हैं। कर्म तो करना अलग, किंतु ओम कह करके मंत्र पाठ किसे कर ले करते है? उसी की पूजा के लिए जो कर्म करते हैं, कर्म करते करते परमात्मा की पूजा होती है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवा, अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा होती है। वेद भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति। वेद शास्त्र का अध्ययन करो, वेद नित्यम अधीयताम अवश्य ही प्रतिदिन अध्ययन करें, वेद अनुकूल शास्त्र भी स्मृति भी हो अनुकूल अध्ययन करें। तद विहित कर्म स्वनुष्ठीयता, शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करें। अध्ययन श्रवण का यही प्रयोजन है, उसे विहित कर्म उपासना का अनुष्ठान करना। जहां कुछ उपदेश शास्त्र का उपदेश श्रवण प्राप्त होता है उसे ये शिक्षा ग्रहण करे, कुछ कुछ हमको क्या करना है, आज सुना इसमें क्या मुझे करना है, जो कुछ कहा गया उस अनुष्ठान करे। और श्रवण भी करे, कुछ पालन नहीं करे तो श्रवण व्यर्थ है। श्रवण करते समय कुछ कुछ उपदेश मिलता है, उपदेश का ग्रहण करें। हमेशा ये दृष्टि रहे उपदेश ग्रहण करने के लिए, उपदेश शास्त्र में सारे उपदेश ही है। सद्गुण ग्राही जो होता है उसको सद्गुण ही दिखता है, गुण ग्राही होना। सर्वत्र कहीं भी देखो कुछ ना कुछ उसमें सद्गुण है। यदि गुण ग्रहण करने के लिए इच्छा करे तो गुण दिखेगा, और जो दोष दृष्टि करने वाला, ऐसा कोई गुण नहीं जिसमें दोष नहीं निकाले। इस शास्त्र में जितने गुण जितने भी हो, दोष निकालने वाले उसे दोष निकाल लेंगे, कुछ भी करो दोष निकल जाएगा। बड़े शानदार प्रसिद्ध कोई बोलता है तो बकवास करता, नहीं बोलता तो क्या मूर्ख है, क्या बोलेगा, धीरे धीरे बोलता है क्या मर गया क्या, जो ये बोलता है क्या मारोगे क्या, पास में आ गया तो क्या ऊपर बैठ जाओगे क्या, कोई नौकरी डांटता है। कुछ भी कहो तुम, बहुत प्रकार कुछ भी कहो। कोई दान करता है तो कहते देखो अपने को दिखाता है, दानी दिखाता है। कोई पढ़ता है तपस्या करता है तो कहीं अपनी घमंडी करता है, मैं तपस्या कर रहा हूं। कोई व्रत उपासना करता है कहते क्या दिखाने के लिए अपने आप कुछ ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कहने वाले, कुछ भी कहने के लिए उनको कोई रोकने वाला नहीं, कुछ कह दे। गुण ग्राही होने पर जो गुण दिखना चाहेगा, दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बना दिए, संस्थान में उनको दिखना गुण दिखा, ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार ग्रहण करने की दृष्टि होनी चाहिए, गुण ग्रहण ग्रहण करना है तो ये इसी पूजा हो जाती है। उपदेश श्रवण करते समय उसे तदुतीत कर्म स्वनुष्ठीयता, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र में उपदेश सुनकर के कुछ कुछ ग्रहण करके आगे बढ़े, ये हमेशा उद्देश्य होना चाहिए। श्रवण क्या, हमको करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, खाली सुनते समय खुश होकर के मनोरंजन कर लेना ये नहीं है। कुछ उपदेश ग्रहण करे आगे बढ़े, यही कर्तव्य अपने को बढ़ना। शास्त्र गुरु तो मार्ग बता देंगे, चलना पड़ता अपने को, चलने के लिए आगे आगे एक एक पाद आगे आगे बढ़े तो आगे बढ़ना होता है, नहीं कि जाए के वहीं रह जाए तो सुन करके कुछ नहीं होता है। श्रवण इसलिए होता है, तो वो जो कर्म करते तदुदितम कर्म सु अनुष्ठितम, कर्म का अनुष्ठान करे तो क्या होगा, तेने सस्य विधियताम अपचिति, शास्त्र विहित कर्म करने से ईश्वर की पूजा हो जाती है। शास्त्र विहित कर्म का उल्लंघन करे और ईश्वर की पूजा करे, बहुत देर तक लंबा आडम्बर करे, ईश्वर ही पूजा नहीं चाहते। ईश्वर पूजा चाहते सदाचार सदमार्ग में चलो, शास्त्र विहित कर्म करो। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे, भगवान कहते मेरी आज्ञा, श्रुति स्मृति आज्ञा का जो उल्लंघन करता है, खाली आरती पूजा बहुत भेंट चढ़ाने से परमात्मा को कुछ नहीं, कुछ नहीं लेते हैं, अपने मन संतोष के लिए होता है। परमात्मा इसे कोई आरती पूजा पुष्प आदि सब देंगे परमात्मा उठा लेंगे, ऐसा नहीं। जो शास्त्र विहित आज्ञा उसका करे तो भगवान यहां भी कहते, भगवान वहां कहते, तो जो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विन्नति मानव, अपने कर्म से परमात्मा की पूजा होती तब सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भाष्य का नीचे कहा तेन विधियताम ईश्वर अपचित पूजा, यहां भी कहते है इससे तस्य अक्षर से अपचित ही, उसे अक्षर ओंकार की पूजा के लिए जो साम कान करते ओमिति कह करके ओम करते तो इससे अक्षर परमात्मा की पूजा हो जाती है, क्योंकि परमात्मा का ही प्रतीक है। उसकी पूजा यदि है, ओंकार की पूजा हुई, प्रतीक की पूजा हुई तो परमात्मा की पूजा हुई। शालग्राम विष्णु के प्रतीक है, और शालग्राम की पूजा होती तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो ओंकार है परमात्मा का प्रतीक, और परमात्मा का प्रतीक ओंकार अक्षर की पूजा स्थित हो तो परमात्मा की पूजा होती है। और महिमा उसकी महिमा से महत्व, ऋत्विक गजनादि उसका वो प्राण के द्वारा उसका निवर्तन गान करते उद्गान आदि करते समय महिमा का अर्थ महत्व, ऋत्विक यजमान आदि के प्राण के द्वारा ही गान करते मंत्र गान करते हैं। और रसेन रस क्या ब्रीहवादी रस से संपन्न होता है हवि प्रदान, यज्ञ आदि कर्म करते चारु पुरोड़ास बनाते हैं, धान को कूट करके तंडुलों को पीस करके पुरोड़ास आदि बनाते हैं, चारु बनाते हैं, ये रस निवृत्त हवि के द्वारा कर्म होता है। इसे सब कुछ महिमना रसन सारे कुछ कर्म और उसके द्वारा परमात्मा की पूजा होती है। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु भगवान का नाम यज्ञ है, यज्ञ जो किया जाता है परमात्मा के लिए, यज्ञ विष्णु देवता। और यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम, यज्ञार्थ कर्म से अन्य कर्म बंधन का कारण, विष्णु परमात्मा को समर्पण कर जो कर्म है वही कर्म मोक्ष का कारण, उससे भिन्न जितने कर्म कामना से कर्म सारे कर्म बंधन का कारण। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, वही कर्म करने के लिए कहते हैं परमात्मा को अर्पण करके। अभी शंका करते हैं आगे मंत्र में, तो ये उपासना करने की क्या आवश्यकता, कर्म करेगा तो फल मिलेगा, ये परमात्मा उपासना ओंकार अक्षर उपासना ये कठिन क्या का जरूरत है। तेन उभौ गुरुतो यश्चे तदेवं वेद यश्च न वेद नाना तु विद्या चा विद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्योत्तरं भवति इति खलु एतस्य वाक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। तेन उभौ कुरुत, तेन इसी कर्म से उभौ मतलब दोनों, दोनों करते हैं, क्या करते हैं दोनों कौन, यश्चेतदेवं वेद यश्च न वेद, जो ओंकार की उपासना करता है जो उपासना नहीं करता है, उपासना जानता है उपासना करता है तो नहीं करता है, केवल कर्म करने पर कर्म ज्ञान हुआ तो कर्म अनुष्ठान करता है। कर्म अनुष्ठान करने के लिए ओंकार के यथार्थ स्वरूप को गुण को जो जानता है वो भी कर्म करता है, जो नहीं जानता वो भी कर्म करता है, तो दोनों को समान फल मिल जाएगा। उपासना का क्या फल है, कर्म करना है, कोई मंत्र बोल करके भोजन बनाता है, कोई मंत्र आदि नहीं जानता है भोजन बनाता है, भोजन तो बन जाएगा। कोई शुद्ध भाव से भोजन बनाता है शुद्धि से मंत्र भगवान से प्रार्थना करके भगवान का नाम लेकर के, और कोई दूसरे कुछ करके अशुद्धि अपवित्र बनाते भोजन तो बन जाता है, खाने वाले को पता नहीं चलेगा ये किसी हिसाब से बनाया, तो इसमें क्या फर्क शंका है, यहां तक शंका है। उभौ कुरुत दोनों, यश्चे तदेवं वेद यश्च न वेद, जो जानता है जो नहीं जानता अक्षर को वो तो कर्म करता है, कर्म से फल मिल जाएगा, समान हो जाएगा, क्या विशेष है उपासना का, यहां तक प्रश्न होने पर उसका उत्तर ऐसा नहीं है। नाना तो विद्या च अविद्या च, विद्या और अविद्या नाना भिन्न भिन्न है, अविद्या अर्थात उपासना के बिना केवल कर्म अलग है, और विद्या उपासना के साथ कर्म करेंगे तो अलग है। कैसे अलग है, यदेव विद्या करुति श्रद्धे उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति, यदेव विद्या श्रद्धया उपनिषदा करुति तदेव वीर्यवत्तरम भवति, जो कर्म करता है पहले विद्या, विद्या से विद्या है विज्ञान उपासना, एक यहां तो ओंकार विषय को उद्गीत विषय को उपासना वो अलग है, अन्य उपासना चिंतन करता है जो विद्या से उपासना युक्त होकर कर्म करता है, और श्रद्धा से कर्म करने वाले दोनों बराबर है, श्रद्धा से जो कर्म करता है वो वीर्यवत्तर अधिक फलप्रद होता है श्रद्धा से। और दूसरा है उपनिषदा, उपनिषद योग, ये उद्गीत आदि अंग विषय को उपासना करके विषय चिंतन करता है परमात्मा का ध्यान करके, ऐसे श्रद्धा से विद्या से उपासना से योग से युक्त होकर के जो करता है कर्म, तदेव कर्म वीर्यवत तरम, वीर्यवत वीर्य सामर्थ्य वाला होता है, तरप दिया है, एक होता है वीर्यवत एक है वीर्यवत्तर, बृहत बृहत्तर अबृहत्तम बड़ा है उससे बड़ा बृहत्तर सबसे बड़ा है बृहत्तम, वीर्य से वीर्यवत्तर हुआ वीर्यवत्तरम, यदि उपासना नहीं करता है तो भी फल मिलता है, फल नहीं मिलता है बात नहीं, फल मिलेगा क्योंकि यहाँ तर्प किया, यहाँ अधिक फल मिलेगा। यदि उपासना के साथ कर्म करेगा तो उसको फल मिलेगा अधिकतर, उपासना नहीं करेगा तो भी वीरवत तो उसका कर्म व्यर्थ नहीं होता है, फल मिलेगा। किंतु उपासना से युक्त करेगा तो अधिक फल मिलता है, वीरवत्तरम भवती थी। वीरवत्तर कहने से उपासना से कर्म करेंगे तो कर्म क्या होगा, वीरवत्तर। उपासना के बिना कर्म करेंगे तो वीरवत, तो वीरवत कहने से सफल है, सामर्थ्य उसका है, फल मिलेगा, किंतु इससे अधिक फल मिलेगा। वही कर्म करते समय कर्मणा पितृलोक और विद्या देवलोक, केवल कर्म करता है तो पितृलोक की प्राप्ति होती है, उपासना के साथ कर्म करेगा तो वही कर्म स्वर्ग प्राप्ति, उत्तरायण मार्ग देवलोक की प्राप्ति होती है। तो किसी भी कर्म करते समय उपासना यो मंत्र चिंतन मंत्र पाठ करते प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व मंत्र का लक्षण, मंत्र करते समय अनुष्ठान काल में अर्थ का स्मरण करना है। यस्य देवताय हवेर गृहीतम चा तान मनसा ध्याये वसत करिष्यन्, देवता के लिए हवि धारण करते हैं, आगे प्रदान करेंगे ऐसा हवि ग्रहण करते समय ताम देवता मनसा ध्याये, इस देवता का ध्यान मन से करें, आगे वसत करें, आगे देवता के लिए जो प्रदान करें स्वाहादि कहेंगे उसके पहले देवता का ध्यान करें, ध्यान करके इंद्राय वरुणाय अथवा इस स्वाहा जब कहेंगे देवता का ध्यान करना। जो मंत्र जप करते उसमें भी ऐसा है, नमः एक जोड़ देते हैं भगवान के नाम रख करके, चतुर्थी विभूति करके, कहीं देवाय कहीं शिवाय कहीं विष्णुवे कहीं गुरवे कहीं नमः भगवान वासुदेवाय नारायणाय इत्यादि नाम जोड़ करके नमः, उनका उनको नमस्कार यही है, मंत्र करते हैं उनको नमस्कार, तो उनको नमस्कार खाली जप भी करते रहे और मन इधर उधर भागता रहे ऐसा नहीं, जप करते समय उनको ध्यान करें, उनका उनको नमस्कार मैं कर रहा हूं तो उस समय सोचे उनको मैं नमस्कार, उनको नमस्कार कहते समय मन से भी नमस्कार करें, अंगुली चलती अभ्यास हो जाता है, मंत्र जप चलता है, कोई बात भी करते ये भी चलती है, ये अभ्यास हो जाता है तो मंत्र जप नहीं, बातचीत भी करते ये भी चलता है, ये कहीं चलाने क्या क्या मतलब, खाली माला को चलाने से नहीं होता है, उसके साथ मंत्र जप हो उसके साथ मन लगाए, एक आलम्बन इसलिए लेते हैं उसके द्वारा इसमें लगे तो मन उसमें लगेगा, किंतु बाद में अभ्यास हो जाता है, मन भी कुछ बात भी कुछ करते किंतु ये भी चलता रहता है, ये खाली चल जाना नहीं, जो चलाए नाम का मन से जप करे और परमात्मा का ध्यान करे, उनको प्रणाम कर रहा हूं हमेशा चिंतन करे, मैं उनके चरण में बैठकर उनको प्रणाम कर रहा हूं, अतः उनसे चरण में प्रणाम कर रहा हूं, उनको नमस्कार बार बार करे, उनका स्वरूप चिंतन ये होता है। तो ये देवता का ध्यान करके ऐसे आगे हवि प्रदान करते हैं, तो ये कर्म इस उपासना के साथ करने से अधिक फल होता है, ये प्रमाण है शास्त्र में बहुत स्थान पर इसी वाक्य को देते हैं, यदेव विद्या करोति सभ्य उपनिषदा तदेव वीरवत्तन भवति, इतने वाक्य बहुत शास्त्र में विचार करते समय ये प्रमाण देते हैं, उपासना से श्रद्धा से जो कर्म करता है अधिक फल मिलता है। अच्छा कुछ भी करते श्रद्धा से जो कर्म करते हैं, पूजा करते समय कुछ दान करते समय किसको प्रणाम करते समय श्रद्धा से भक्तिपूर्वक करे अधिक फल होता है, ऊपर ऊपर करते फल नहीं होता है, वो श्रद्धा से करे, पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान कहते हैं, भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक कुछ भी अर्पण करते हैं तो परमात्मा ग्रहण करते हैं, श्रद्धा या देयम अश्रद्धा अदेयम, तो श्रद्धा एक बड़े साधन है, दैवी संपत्ति है, इसमें वेदांत में तो श्रद्धा को कहा यह वस्तु उपलब्ध थे, शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धियावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वि यया वस्तु उपलब्ध थी, शास्त्र वाक्य गुरुवाक्य को सत्य बुद्धि से दृढ़ करके रखना, अवधारणा मन में स्थिर हो जाना, दृढ़ निश्चय यही है, शास्त्र जितने अंतकोण शुद्ध है इतने शास्त्र वाक्य में श्रद्धा है, ऐसे मंत्र सुना इतने दृढ़ विश्वास है, ऐसे उपासना करने से फल मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, अंतकोण शुद्ध होता है, इतने दृढ़ निश्चय होता है श्रद्धा अधिक उनसे, तो सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वी यया वस्तु उपलब्धते, परमात्मा तत्व वस्तु की उपलब्धि साक्षात्कार होता है श्रद्धा से, श्रद्धा साक्षात्कार का साधन है साक्षात, और ये श्रद्धा भी पुण्य बहुत पुण्य पूर्वजन्म के तपस्या का फल होता है, सन्मार्ग में सत्पुरुष में शास्त्र में श्रद्धा होनी, अपनी इच्छा करके कहेंगे इनके प्रति तुम श्रद्धा करो, नहीं होता है। अब श्रद्धा यदि है उसका अभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, वो श्रद्धा ही से होती है। तो ये सब श्रद्धा से करने से, और यदि श्रद्धा नहीं तो उसमें श्रद्धा कैसे हो, सेवा आदि करे तो थोड़ा नम्रता ऐसे करके श्रद्धा से करने से अधिक फल मिलता है। और विज्ञान मन को स्थिर करके जो करता है, उपनिषद है रहस्य विज्ञान, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है और संहिता उपनिषद व उपम्य उपनिषद अर्थ का रहस्य भी है। उपनिषद ब्रह्म विद्या रहस्य, रहस्य मत रहस्य भव एकांत में उपदेश किया जाता है, इसलिए उसका नाम है रहस्यम। जो मंत्र आदि कुछ गूढ़ एकांत में बताते उसको कहते हैं रहस्यम। ये उपनिषद शब्द का अर्थ भी रहस्य है। ऐसे एकांत योग से श्रद्धा से युक्त अगर करता है अधिक फल मिलता है। इति खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति। पहले प्रारंभ किया था तस्य उपव्याख्यानम, यहां तक इति कह करके समाप्त कर दे। इसी प्रकार यह ओम इस अक्षर का उपव्याख्यानम, किस प्रकार उपासना करना चाहिए, कैसे फला है, क्या फल है, ऐसे बता दिया। ऐसे होता है उपासना, अनेक विशेषण से रसतम आप्ति समृद्धि गुण वाले अक्षर, ऐसी एक उपासना यहां तक हुआ। आगे प्राण दृष्टि से भी उपासना करना है ओंकार की, तो प्राण उपासना है। देवासुरा हवै यत्र संयेतिर उभय प्राजापत्यस्तद्ध देवा उद्गितम आज हुरुरने नैनान विभविष्याम इति। देवाश्च असुराश्च, देव और असुर दो यत्र संयत्रे, जिस विषय में जिस निमित्त से परस्पर संपूर्क यम धातु यत धातु संग्राम अर्थ की परस्पर विवाद संग्राम किया देवता असुर, किसलिए इतरे तरह विषय अपहार, उनका विषय को हम ले लेंगे उसका विषय को ले लें, ये क्या ये हमारा ये हमारा, देवता ग्रहण अधिकार ले लेते हैं। जैसे लोग में कोई स्थान ग्रहण करने के लिए जमीन आदि के ग्रहण को हमारे यहां तक कोई हमारा यहां तक विवाद करते हैं, ये देव असुर में इसे अनादिकाल से संग्राम है। और यहां देव शब्द से क्या है, दीव द्योतन प्रकाश कर्थन से शास्त्र संस्कार जनित अंतकर्ण की वृत्ति, ये देव शब्द से कहा गया। देवा क्या, शास्त्र उद्भाषिता इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय की वृत्ति अंतकर्ण की वृत्ति, शास्त्र सम्मत शास्त्र श्रवण करने पर सात्विक वृत्ति शास्त्रीय वृत्ति, ये होता है देव। और असुर क्या होता है, उसके विपरीत। असुर शब्द का नाम असुर हुआ असुसु रमनते थे असुरा, असु प्राण, प्राण में रमण करते हैं, जो प्राण इंद्रिय विषय सेवन करके उसमें तृप्त रहते हैं वो असुर है। शास्त्र संस्कार को छोड़ करके, शास्त्र में कहा गया प्रातःकाल जग करके कुछ भगवान के संध्या वंदन पूजा पाठ कुछ करे सत्संग करे, किन जो शास्त्र के विरुद्ध सोते रहेंगे 10-11 बजे तक तो क्या हो, असुर के समान हो गया। सब सर्वत्र शांति सम आदि युक्त देव दैविक वृत्ति, देवासुर संग्राम यही है। दैवी संपद और आसुर संपद गीता में आया, दैवी संपद विमोक्षाय बंधाय आसुरी, ये आसुर वृत्ति है स्वाभाविक वृत्ति। स्वाभाविक वृत्ति इंद्रिय विषय में प्रवृत्त होना, विषय सेवन करना, विपरीत मार्ग में चलना, उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही चलते हैं। शास्त्र श्रवण करके सत्संग के महापुरुष से उपदेश ग्रहण करके शास्त्र के अनुसार वृत्ति अपने धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, चलना पड़ता है, एक साथ परिवर्तन नहीं होता है, कुछ कुछ सीख सीख करके शास्त्रीय मार्ग पर चलना, मार्ग ठीक मार्ग पर चलना शुरू कर दे धीरे भी चले तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। गलत मार्ग पर चले जितने जोर से चले तो भी व्यर्थ है, गलत मार्ग पर चले नहीं चलना तभी तक ठीक है, चले तो ठीक मार्ग पर चले। इसलिए थोड़ा मार्ग और मनुष्य जन्म प्राप्त होकर के यदि मार्ग पर चलना शुरू नहीं किया तो जन्म व्यर्थ होता है, नहीं चलेकर चुपचाप रह जाए तो पशु पक्षी जैसे बराबर हो गया, चलने के लिए दिया गया, मनुष्य जन्म दिया गया, तुम धर्म सन्मार्ग में चलो, धर्म करो, परमात्मा प्राप्त करो, अपने आगे दुर्गति नहीं हो, कैसे ठीक सुधार करो, वो नहीं किया तो पशु पक्षी के समान हो गया। पशु पक्षी तो खा पी कर मरते है, मनुष्य विषा हो जाएगा। यहाँ देवाश्रम में दो वृत्ति हुई, शास्त्र संस्कार युक्त वृत्ति को देव शब्द से कहा, और विषय में विषय सेवन करते हैं स्वाभाविक वृत्ति, इंद्रिय की वृत्ति, अंतकर्ण वृत्ति, ये हो गया असुर। ये दोनों का परस्पर संग्राम क्या है? संग्राम है देवता लोग को चाह, देवता इंद्रिय वृत्ति शास्त्रीय संस्कार होने पर तामस्य वृत्ति को कम कर देते हैं और जो स्वाभाविक प्रवृत्ति को कम कर लेते हैं। सब लोगों में कुछ कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और स्वाभाविक वृत्ति कम करते हैं शास्त्रीय वृत्ति बढ़ने पर, तो असुरों का असुरों की पराजय हो जाती, देवताओं की जय हो जाती। और देवता असुर भी देखते हैं कहीं मौका मिले तो देवताओं को परास्त कर लेना चाहते, दबा देते हैं। ये ऐसे संग्राम अंतकरण में चलता रहता है। थोड़े प्रमाद हो जाए, रजोगुण तमोगुण बढ़े, सात्विक वृत्ति दब जाती है। शास्त्र में मालूम होने पर भी रजोगुण बढ़ गया, काम क्रोध लोग बढ़ गया, श्रवण क्या हुआ सात्वगुण है, स्मरण करता है कि मेरा उचित नहीं करना चाहिए, क्यों रजोगुण बढ़ लिया तो अभी तक कर ले देता, अभी तक बोल देंगे उसको, तो अब डांट कर उसको एक बार दूसरे को कष्ट देने के लिए उसमें इतने क्रोध हो जाता है, दूसरे थापड़ लगा दो बाद में देखा जाएगा। उसमें कोई कहे पाप कर्म करें तो नरक जालो, जो होगा होगा। अभी तो उस समय तो सुनने पर भी नरक का नाम सुनने पर भी भय नहीं लगता है, कुछ न कुछ कर लेता है। तो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाने पर शास्त्रीय वृत्ति सब के अंतकरण में दब जाती है, ये परास्त ये जीत जाती है असुर। इसलिए हमेशा ही अपने आप देखे, अंतकरण में युद्ध चल रहा है, अपने आप देख करके अपने आप करना पड़ेगा। क्रोध हो जाता है सबको, छोटे छोटे विषय में कोई क्रोध करते और सन्मार्ग में चलने पर धीरे धीरे जो प्रयास करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उपासना करता है, श्रवण करता है, वो धीरे धीरे क्रोध को स्वयं अपने आप कम करता है। प्रयास करने पर धीरे धीरे कम करने पर कम हो जाता है, किन्तु पहले प्रयास करने की इच्छा करे, प्रयास करे, अपने आप समझे। जानते हैं क्रोध से लाभ नहीं, किन्तु क्रोध हो जाता है उस समय, और कुछ नहीं दिखता है, एकदम बिल्कुल असुर जैसे हो जाता है। तो ये जो असुर देवताओं का संग्राम, ये संग्राम परस्पर इंद्रिय वृत्ति अंतकर्ण वृत्ति परस्पर, इसका विषय को लेना चाहते, उसका विषय वो लेना चाहते, ये ज्यादा दखल करना चाहते, वो ज्यादा दखल करना चाहते, अर्थात शास्त्रीय वृत्ति देवता अपने अधिक होकर के सन्मार्ग में चलने के लिए जो तैयार होते हैं, असुर देखते हैं अशास्त्रीय वृत्ति स्वाभाविक वृत्ति, थोड़े का इसमें प्रमाद मौका मिला उनको दबा करके आगे बढ़ जाते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरे दब जाएगा, ये बढ़ेगा तो उस दब जाएंगे। ये दोनों का जो संग्राम यही चल रहा है परस्पर, ये अनादिकाल से चल रहा है। ये जो चल रहा है इसमें आगे आया प्राजापत्या उभय प्राजापत्या, प्रजापति के अपत्य प्राजापत्य, ये देव असुर दोनों, देवता और असुर को भगवान प्रजापति ने बनाया था। यहां प्रजापति शब्द से कर्म और उपासना से, उपासना में अधिकारी पुरुष, कर्म ज्ञान अधिकारी पुरुष ही प्रजापति। आप स्वयं एक एक स्वयं एक एक प्रजापति बैठे हैं, कर्म उपासना में अधिकारी प्रजापति, उसके दो अपत्य पुत्र स्थानीय हो गए। अंतकरण की जो वृत्ति है आप ही बनाते हो, वृत्ति अपने आप हो जाते नहीं, उसके साथ तादात्म्य करके अपने आप जुड़ जाते हैं। तो अपने कभी सात्विक वृत्ति बना देते हो, कभी तामस वृत्ति बना देते, दोनों पुत्र के बराबर हो गई। ये दोनों प्राजापत्य प्रजापति के अपत्य प्राजापत्यों के देव असुर, पुरुष एव उत्तम अयम एव महान प्रजापति, इस श्रुति में कहा गया यही पुरुष ही प्रजापति है। शास्त्रीय स्वाभाविक की वृत्ति दो वृत्ति हो गई, दोनों अपत्य के समान हो गए। अपत्य तो वास्तव नहीं, अपत्य के समान क्योंकि स्वयं उनको बनाता है। उत्कर्ष अपकर्ष रूप के कारण कोई बढ़ जाएगा तो उत्कर्ष होगा, दूसरा दब जाएगा। ये जब दब जाते हैं क्रुद्ध होते देखते मौका, उनको कैसे दबाकर ऊपर उठ जाएंगे, दौड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, कोई पीछे पड़ा वो चाहता है कैसे मैं आगे बढ़ जाऊं। दोनों एक बढ़ता तो दूसरे को दबाता है, ये बढ़ेगा तो उसको दबाएगा, यही दोनों का संग्राम है। इसमें देवता लोग ने क्या विचार किया, उद्गीतम आजहुरूर अनेन एनाम अभी भविष्याम, और ये असुरों को दबाने के लिए खाली ये झगड़ा नहीं कि मारपीट कर दबाना, ये मारेंगे तो भी मारेंगे, ये झगड़ा से ये समाप्त नहीं होता है। ये कर्म शास्त्रीय मार्ग से दबाना, शास्त्रीय मार्ग पर चलेंगे तो आश्रय वृत्ति अपने आप कम हो जाती है। जो दुर्गुण अपने में है हटता नहीं, क्रोध काम लोभ आदि है, राग द्वेष है, शास्त्रीय वृत्ति पर चलो, सन्मार्ग में चलो, थोड़ा ये शास्त्र श्रवण जप ध्यान आदि कुछ कुछ करते रहो। काम क्रोध लोभ, लोभ होता है तो देना शुरू करो, दान करना। लोभ स्वाभाविक है, लोभ अधिक है, काम क्रोध लोभ नरक त्रिविधम नरक सेदम द्वारम, तो उसके नाश करने के लिए ये भी शुरू करो, थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू करो। अब क्रोध होता है, क्रोध को दबाने के लिए क्रोध से कुछ बोल दिया, क्रोध होता है तो बोलना बंद कर दो, क्रोध के समय नहीं बोलना अच्छा है, बोलने पर गलत ही होगा। जो शब्द जितने सावधान होकर बोले वो शब्द कटु शब्द हो जाता है, और बाद में यदि क्रोध से कुछ बोल दिया बाद में पश्चाताप करो, क्षमा प्रार्थना करो, जिसको बोल दिया उसको बोलो भाई मैं इसे क्रोध से बोल दिया। ऐसे अभ्यास करने से ये छोटे हो बड़े हो, क्रोध आ गया तो अपने दुर्गुण है, अपने आप देखे क्रोध कैसे करते, हम चाहते ऐसा और दूसरा कुछ दूसरे चाहता है, हमारे मत के अनुसार नहीं चलता है, उसकी कोई गलती देख करके हम क्रोध करते हैं, ठीक है उसकी गलती है, उसकी गलती के कारण आपने क्रोध किया, आपने जो क्रोध किया वो आपकी गलती है या नहीं? उसकी गलती देखकर पहले तो क्रोध करते सोचा हम ही क्रोध करेंगे, ये क्रोध हमारी गलती है या नहीं, स्वयं समझता है क्रोध तो गलती है। कितने लोग पूछते हैं भगवान महाराज जी हमारे क्रोध आ जाता है कैसे, हम क्रोध कितने लोग कहेंगे, ये बहुत बहुत बड़े बड़े कहते हैं हमारे क्रोध बार आ जाता है, बस क्रोध अपनी गलती है, और दूसरे गलती देखकर तुम क्रोध करो तो अपनी गलती का सुधार करो। अपनी गलती को सुधार करने के लिए आपके पास सामर्थ्य अधिकार है, दूसरे गलती को सुधार करने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। भगवान भी हार गए, भगवान श्री कृष्ण क्या दूसरे को सिखा करे समझौता कर दिया, नहीं नहीं कर सकता है। पिता भी हार जाता है पुत्र को, जब तक बच्चा है तब तक सिखाता है, बड़ा होने पर घड़ा पकने के बाद और पिटो टूट जाएगा, पड़ जाएगा, सुधार नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, कोई गुरु शिष्य को भी, शिष्य सब आकर के बड़े आग्रह से आते हैं, प्रार्थना करते हैं हम रहेंगे अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे, थोड़े पढ़े नहीं पढ़े कुछ कारण अभिमान हो गया थोड़ा हमको आ गया कि हम चले जाएंगे, कहेंगे अरे तू पढ़ने के लाया था थोड़ा और रहो, वेदांत श्रवण करो, अभी तो व्याकरण पढ़ा था ना, बहुत हुआ कि नहीं नहीं मैं तो चल जाऊंगा, अब हमको यहाँ कोई पूछते नहीं। ऐसे कहकर इतने हो जाते हैं, जितने सिखाने पर नहीं चल जाते, जब आएंगे तो बड़े नम्र होकर फिर भटक भटक कर एक साल दो साल के बाद फिर आते हैं, फिर आएंगे तो फिर जो पढ़े तो वो भी भूल जाते हैं, फिर शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़े दिन एक दो महीना शुरू करते हैं, फिर उनको शर्म लगता है हमारे साथ जो पढ़ रहे थे तो आचार्य बनेंगे बड़े ऊपर चले गए, हम तो बच्चे के साथ पढ़ते, फिर पढ़ने से क्या होगा भागो, फिर भर जाते हैं असफलता से, ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे क्रोध होने पर क्षमा प्रार्थना करे, आगे बढ़े, दूसरे दोष का निवारण करने के पीछे अपने दोष निवारण करे। हमेशा ही दूसरे दोष देखकर के हमको क्रोध होता है, और दूसरे को सुधार करना हम चाहते, अपने मन को सुधार करो, अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर करो, ठीक है। दूसरे को जहां अधिकार है, अपने शिष्य पुत्र आदि जितने उसको उपदेश करना, थोड़ा कहना है, बहुत ज्यादा कह करके देखने लाभ नहीं होता है, व्यर्थ अपने समय क्यों नष्ट करना, थोड़े कह करके अल्प कहे जितने कहे, फिर अपना अपने में ठीक सुधार करो, अपना सुधार करना ही चाहिए। तो ये क्या किए, उद्गित हम आज हो, उद्गित लक्षण उद्गात कर्म, सामवेद के ऋतु उद्गाता वो कर्म किया या करके ज्योतिषम आदि कर्म करके कहते ये देवताओं को इसे हम दबाएंगे, असुर को दबाएंगे। देवता लोगों ने क्या सोचा, जब सत्कर्म आप करते हैं, वेद मंत्र आदि पाठ करते हैं, वैदिक मंत्र पाठ करते हैं, यज्ञ पेट दान करते हैं, प्राणाहुति देते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, भोजन में ठीक इस प्रकार है, जब भोजन शुद्ध है सात्विक है देवताओं का अधिकार होता है, पितरों का अधिकार होता है, जब विवाह आदि करते हैं शुद्ध भोजन बनाए, पितरों को देवता को अर्पण करे, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, सन्यासी महात्मा ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसके बाद सब लोग को भोजन करे, ब्राह्मण भोजन कराए, सन्यासी महात्मा न मिले तो अच्छा है, नहीं तो ब्राह्मण पंडित, तो किन्तु कैसे भोजन हो जो देवताओं के पितर को देने के लिए अर्पण करने के योग्य हो, सब शुद्ध पवित्र। घर में भी जब भोजन बनाते हैं भोजन पवित्र रहे तो देवताओं का पितरों का अधिकार है, राक्षस असुर दूर रहेंगे। जहां अपवित्र हो गया, झूठा हो गया, अथवा जो देवताओं के पितरों को अर्पण नहीं किया जाता है, इसे वस्तु डाल दिया, देवताओं के पितर लोग वहां आएंगे, वो हट जाएंगे। विवाह में हो, घर में हो, भोजन बनाते समय जो देवताओं के पितरों का अर्पण नहीं होता है, वो चीज यदि आप भोजन में डाल दिया, देवता और पितर लोग दूर हट जाएंगे, वहां नहीं आएंगे। वो जब हट जाते हैं तो अश्र भूत पिशाच प्रेतों का प्रवेश होता है, वो उनका अवश्य में अधिकार हो गया, भोजन जुटा हो गया, अथवा इसे जो अपवित्र हो गया, जो भोजन जो भोग नहीं लगता है भगवान को, प्याज रसन भोग लगता है भगवान विष्णु को शिव जी को पितर को लगता है, साथ में नहीं होता है, वो जो डल दिया वो हट गए, वो जब हट जाते उनका अधिकार हटने का, उनको दूर करने वो मुख कर लिया हमारा नहीं है, जब उनका नहीं है तो इनका प्रवेश तुरंत हो जाता है। तो देवता ये राक्षस पिशाचों का क्या होता है, कभी किस किस शरीर में प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के पूछने पर कहते हुए वाराणसी में चाहे पूछते हैं, बोलता है तुम क्यों ऐसे करते, किसके एक लड़के 8 साल 9 साल में कोई ऐसे आ जाती थी, कोई अन्य आगे प्रविष्ट होकर कुछ ना कुछ बोलती कुछ करती, तांत्रिक को बोला है, तांत्रिक बोलता है, तांत्रिक को जो बोला है वो है, बोला अभी तांत्रिक आ रहा है, कितने देर तांत्रिक रहेगा, मैं बाद में आऊंगी, चला गया, वो ठीक हो गया, तांत्रिक आया तो कुबेर नहीं है, फिर कहा मैं तांत्रिक को बताया मैं पूजा करूंगा उसको बुलाऊंगी, फिर पूजा करके उसको बुलाया, उस पूजा कर तंत्र छात्र कुछ करके लाठी प्रहार लेकर के भूतल में पिटाई किया जोर से, बुलाया वो दौड़ते दौड़ते करे वही लड़की के तारे में प्रकट हो गया, ऐसे करने लगा ये छोड़ो छोड़ो मुझे पिटाई नहीं करो, वो लड़की बोला अन्य प्रेत आदि प्रविष्ट होता था वो आ गई, ये पूछा तू क्यों आती क्यों होते तू कौन है बोलाओ बताओ, तो बोला मैं कहीं थे ऐसे मर गई, क्या क्या बताया अतृप्त आत्मा कम उम्र में मर गई थी, इसके सारे में क्यों प्रविष्ट, क्या मैं प्रेत होकर घूम रही हूं, तो इसके सारे में क्यों, मैं हमको भूख प्यास बहुत लगता है, तो भूख प्यास रहता है इसी में क्यों, जो खाद्य हम चाहते हैं उनके लिए जो खाद्य ग्रहण करने के लिए खाद्य मिलता है, मुख कहते सुई जैसे जो इंजेक्शन सुई जैसे इससे सुई जैसे आपको शरबत पीने के दो ऐसे सुई जैसे इंजेक्शन के मुख लगा दो खींचो खींच खींच कर कितने आएगा, तो यही से खाने से मुख छोटा होने से खा नहीं पाते हैं, इसे जितने खाद्य चाहिए सुई जैसे मुख होता तो खा नहीं पाते, नहीं खा पाने से क्षुत पिपासा क्षुधा पिपासा हमेशा भूखे रहते पिपास रहते हैं, इसलिए क्या करते हैं किसके शरीर में प्रविष्ट होकर के खून चूसते हैं रक्त पी लेते हैं, वो रक्त पीने पर फिर पीते पीते फिर वो मर जाएगा, फिर उसको बताया कि आप कभी इसको नहीं आ नहीं आना तुम बता दिया, बोला नहीं आऊंगी करके तुम पूजा करके, बोला ऐसा नहीं जाना है जा अब नहीं आएगी बोला नहीं आऊंगा, तो ऐसे जाना है बाल्टी पानी है इसी बाल्टी पानी को दांत में इसे पकड़ करके लेकर जाओ, तो बच्चे 8 साल 9 साल के अंदर वो बाल्टी पकड़ लिया दांत से पानी भरा हुआ ले करके 20-25-30 फुट जो गया वहीं बाल्टी गिर गया वहीं गिर पड़ा, फिर बाद में लड़की ठीक हो गया आ गया, वो लड़की को मैंने देखा था उसको बताया बाद में कहिए इसको उठाओ दांत से, बोला दांत किसी उठा दांत टूट जाएगी, बोला अरे पकड़ो दांत को नहीं दांत से किसी में उठाऊंगी, किन्तु उस समय उसके था उसके बल से इसे उठाया, तो भूत प्रेत क्या करते आ करके प्रविष्ट होते भोजन अशुद्धि होने पर उनका अधिकार होता है, इसलिए यहां भी वृत्ति में इस प्रकार जब आप इस सन्मार्ग में चलो आसुर वृत्ति नहीं आएंगे उसका प्रवेश नहीं होगा, यदि कहीं आपके कुछ थोड़े दोष आ गया असुर देखते हैं कहां त्रुटि दे करके दखल करने के लिए, वहां भोजन में देखे अशुद्ध हो गया अपवित्र हो गया तुरंत आ जाएंगे, कोई कमती नहीं है दिखते नहीं, भूत पिशाच बहुत होते हैं, भूत पिशाच आकर के आगे प्रविष्ट हो गई कुछ नहीं करते उसमें खाएंगे, अच्छा जो चीज असुरों के लिए हो गया वही चीज आप भोजन कर सबको खिला प्रसाद पाओ उसमें क्या होगा, उसका प्रभाव मन के ऊपर आता है, इसलिए विवाह में तलाख लाख करोड़ करोड़ खर्च करते हैं कि इतनी चीज भोजन शुद्ध बना करके पितर को देवता को अर्पण करके उसके बाद सब लोग आओ, ये नहीं हो पाता है भूत में, कहने पर नहीं कर पाते हम, अभी अभी कहीं बताया अरे प्याज लहसुन छोड़ करके बनाओ, कोई कोई करते हैं, कोई एक व्यक्ति ने किया डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे हमारे भक्त ने बताया उनके कारण 7-8-10 इतने हो गया प्याज लहसुन के बिना पूरा भोजन बनता है विवाह में, और ये कहा विशेष है कि सब लोग खा करके खुश होते कहते बहुत अच्छा बनता है प्याज लहसुन के बिना, और एक किसके लिए कोई नहीं माने तो 2 भाग प्याज लहसुन के साथ भोजन अलग उसके बिना भोजन अलग बना लिख दिए जो जिनको चाहिए, प्याज रसन वाले भोजन करने का पीछा इधर बहुत करने लगे भोजन बिना प्याज रसन असर खुश होकर के बहुत अच्छा भोजन बना, गर्म तो हमेशा प्याज रसन खाते यहाँ खाए वो बताए वो बना गरम मसाला टमाटर अदरक आदि डालकर के बनाते हैं, पहले बनता था असम में बनता है मंदिर में बनता है जगन्नाथ मंदिर में देखो भोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं सब जाकर देखो हाँ भोजन करो ऐसे कभी भोजन घर में नहीं बना सकते उसका क्या है, भगवान का अर्पण जो होता है प्रसाद हो जाता है उसका जो स्वाद है, उसका जो पवित्रता, उससे खाने से मन में शांति वो कभी नहीं मिलेगा कहीं। अब होटल में जो बनाते हैं, बनाने वाले भी क्या है, कितना पवित्र बनाएंगे, कितने खर्च कर बर्बाद करते हैं। तो ये थोड़े शुद्धि होना आवश्यक है। जब शुद्धि हो तो देवता देवत्व ये वृत्ति रहती है, शांति मिलती है। और जब अशुद्धि अपवित्रता हो गई, झूठा हो गया, गया झूठा यदि हो गया, उसके किसको दिया तो पाप लगता है, उसको पता नहीं आपने कैसे बनाया, कोई भोजन है किसको दिया, किसी को भी दे ऐसे झूठा नहीं देना होता है, झूठा जी देते तो उसमें कुछ अपने पुण्य चल जाता है, पाप लगता है। तो ये सब हमेशा ही ये संग्राम चलता है। देवता लोगों ने क्या किया, इनको हम दबाने के लिए ऐसे कर्म किया, शास्त्रीय कर्म किया, ज्योतिषमादि कर्म करने पर क्या कहते हैं देवता लोग, फिर कहे तुम क्या करते हैं, तेह नासिक्यम प्राणम उद्गितम उपासांच क्रीरे तं हासुरा पाप मना विधुस्तस्मातेन वयम जिग्रति सुरभि च दुर्गंधि च पाप मना हे सविद्ध। देवता लोगों ने क्या किया, नासिका में होने वाले जो प्राण, इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहते, क्योंकि प्राण से इंद्रिय की वृत्ति, इंद्रियों का व्यापार होता है। नासिका में होने वाले प्राण था घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय को उद्गित करता करके कहा, तुम नासिका में होने वाले जो प्राण घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय की दृष्टि से उद्गित अक्षर की उपासना की। इसका अर्थ नासिकम प्राणम उद्गितम उपासन चक्र, नासिका में होने वाले जो प्राण अर्थात घ्राण इंद्रिय वो उद्गित है, उसकी उपासना की। उद्गित और घ्राण इंद्रिय एक कैसे होगा, उद्गित घ्राण इंद्रिय की दृष्टि से उद्गित ओंकार की उपासना। ओंकार की उपासना परमात्मा बुद्धि तत्व है, यहां किस दृष्टि से, घ्राण इंद्रिय की दृष्टि से ओंकार की उपास्य तो ओंकार, उसमें क्या दृष्टि करनी, घ्राण इंद्रिय उपासना की। तो ऐसा उपासना करने से क्या हुआ, जब घ्राण इंद्रिय गंध ग्रहण करने वाले घ्राण इंद्रिय है, तो वो क्या स्वयं कुछ अपने कुछ कमजोरी है, वहां असुर उसको दबाते हैं। नासिक प्राण में क्या सुगंध ग्रहण करती है इंद्रिय, कल्याण गंध ग्रहण का अभिमान हुआ, मैं सुगंध ग्रहण करने वाले में ही हूं, जो अभिमान थोड़ा सा आया, ये अभिमान के कारण आसक्ति है, कल्याण गुणों को मैं सुगंध ग्रहण करने वाला मैं हूं, और बाकी जो इंद्रिय कोई गंध ग्रहण करने वाले है सबके इंद्रिय में, नासिका से घ्राण इंद्रिय से गंध ग्रहण होगा, चक्षु से रूप ग्रहण होगा, रसन इंद्रिय से रस ग्रहण होगा, ये जो अलग अलग है उसका अभिमान मैं गंध ग्रहण करने वाले कौन कौन करता है, अभिमान हुआ। अभिमान करने वाले छोटे छोटे चीज के लिए अभिमान, सब कुछ ना कुछ करते हैं, किन्तु मैं ऐसा करता हूं, जो अभिमान हुआ ये अभिमान रूप के कारण उसका विवेक विज्ञान अभिभूत हो गया, दब गया। जब कहीं आपको अभिमान अहंकार थोड़े आ जाए तो विवेक विज्ञान अभी दब जाता है। इसमें साथ भगवान भाष्यकार कहते कल्याण गंध ग्रहण के अभिमान और उसमें आसक्ति हो, कहीं किसी में आसक्ति अभिमान हुआ उसके कारण उसका विवेक विज्ञान दब गया, यही दोष हुआ घ्राण इंद्रिय का। इसी दोष के कारण असुर वृत्ति आकर के उसके अपने पाप से भेद डाला, पाप का संबंध कर दिया, अपने पाप है पाप दोष से संसर्ग कर दिया, पाप युक्त कर दिया, घ्राण इंद्रिय में पाप का संबंध कर दिया, कौन असुर वृत्ति। असुर वृत्ति देखते हैं इसमें जब दैवी वृत्ति है असुर वृत्ति कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा अभिमान हो गया, मैं सुगंध ग्रहण करने वाला हूं, सुगंध में आसक्ति, थोड़े अभिमान के कारण वहां असुर वृत्ति उसको दबा देकर अपने पाप उसमें जोड़ दिया। अभी पाप से युक्त होने के कारण घ्राण इंद्रिय से केवल सुगंध नहीं दुर्गंध का भी ग्रहण होता है। पहले प्रजापति के प्राण में ऐसे हुआ था, पहले ऐसे अभिमान होने के कारण पाप असुर पाप संबंध हो गया, तेन उभयम जिग्रति पापना विविध पाप संबंध कर दिया असुर आकर के, तस्मात इसी कारण से पाप से युक्त होने के कारण उभयम जिग्रति सुरभि च दुर्गंधि च, घ्राण इंद्रिय दोनों सुगंध और दुर्गंध दोनों ग्रहण करने वाले घ्राण इंद्रिय, क्यों ऐसे हुआ, पापमना ये सब विद्ध ही का यशमात, क्योंकि ऐसा पापमना विद्ध पाप से संबद्ध हो गया, पाप से संबंध होने के कारण इच्छा नहीं होने पर भी दुर्गंध ग्रहण करना पड़ता है। ये जो पुण्यगंध पृथ्व्याम, पृथ्वी में पुण्य गंध कहा गया, दुर्गंध जो है परमात्मा का स्वरूप नहीं, पाप के कारण दुर्गंध युक्त हुआ उसका ग्रहण करता है मनुष्य। घ्राण इंद्र में पाप का संबंध हुआ। यहाँ क्या शिक्षा करनी है, कभी कुछ उत्कर्ष करते समय अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं कुछ करता हूं करके थोड़े अभिमान आ गया, वहां पाप घेर लिया। थोड़े से भी अभिमान अहंकार सत्कर्म यदि होता है, परमात्मा से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से कुछ हो गया। लोग कहते हैं बोलने के लिए, हम क्या करेंगे, भगवान कराते आप करते, इसे कहते तो है किन्तु अंदर अहंकार रह जाता है। शब्द से कहने का अलग है, शब्द से कहते तो मन में सही सा हो, कुछ सत्कर्म होता है तो अभिमान कुछ नहीं, क्या मेरे सामर्थ्य करने का। वही मनुष्य कभी क्रोध होकर दूसरे को मार देता है, वही आप कभी क्रोध होकर कुछ ना कुछ बोल देते हो। अभी क्यों प्रेम से बोलते हो, ये अपनी उदारता अपनी बड़ापन नहीं है, समझ, यही परमात्मा की कृपा है। यदि स्वयं कभी हम क्रोध हो, क्रोध हमको आ जाता है, सबको क्रोध आ जाता है, सोचे हमको क्रोध आ जाता है तो हम कटु वचन बोलते हैं, इस समय प्रेम से बोलते हैं, कभी हम किसको नहीं देता, अभी सब करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमारे कुछ गुण ऐसा नहीं समझना, ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा सोच करके अपन में कुछ उत्कर्ष आया उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। साधक में ये अभिमान, थोड़ा सा अभिमान आया तो गिरा देता है, वही असुर आकर दखल कर लेते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहना, यही उपनिषद मंत्र के द्वारा यही शिक्षा देते हैं कि थोड़े से भी उसमें कमजोरी आया, अभिमान आ गया, कमजोरी आई, वहां उसको असुर दबा देते हैं। सात्विक वृत्ति बढ़ते रहे, उसमें कहीं भी नहीं हो, सात्विक वृत्ति सत्संग करते, पूजा पाठ करते, यज्ञ दान तप करते, उपवास करते, व्रत के सब, उसके साथ साथ हमेशा सावधान रहे, अभिमान नहीं हो। हमसे करने वाले बहुत ही, हम क्या करते, बहुत करना चाहे नहीं कर पाते, उसे दिया बहुत देना चाहे हम नहीं दे पाते, इसे क्या हिरिया दे, लज्जा से भी देते समय लज्जा हो, हम तो अधिक दे सकते कम देते, कभी अधिक देने समय अधिक देता, ऐसा देखे बहुत लोग कम देते मैं अधिक दिया, वो नहीं देखे मैं इतने दिया, मैं तो अधिक दे सकता, मेरे से देने वाले अन्य बहुत लोग है। इसी प्रकार हमसे कुछ नहीं, कभी भी कुछ कर्म क्या, उपासना कुछ किया ठीक है करते हैं, करने के बाद ये मन में अभिमान नहीं हो मैंने किया, और दूसरे को बताया कि धर्म जो प्रकटीकरण मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं, ये सबसे सावधान रहना चाहिए। ऐसा होने से पाप फिर आकर दबाते हैं, और पाप जब दबा देते हैं, सात्विक पुरुष भी पाप युक्त हो गया, रजोगुण तमोगुण बढ़ गया तो सात्विक वृत्ति दब गया, दब गया तो क्रोध बढ़ जाता है, काम क्रोध लोभ हो गया, फिर रास्ते से भट रह जाता है, ये सीखना करना है। अब इसी प्रकार प्रत्येक इंद्र को इसी प्रकार सब कहते, तुम हमारे लिए उद्गान करो। इंद्र अपना सर्व प्रत्येक इंद्र आरंभ करते समय उसका थोड़ा कल्याण, रूप ग्रहण, रस ग्रहण, गंध ग्रहण सब में आसक्ति, असुर उनको पाप से वेद डालते हैं, प्रत्येक इंद्र के एक साथ कह देते हैं, भाष्य ज्यादा नहीं। इसी प्रकार सब प्रत्येक इंद्र अलग अलग देवता असुर का संग्राम में दैवी वृत्ति हो गए देवता, आसुर वृत्ति होगी अंतकरण की वृत्ति, इंद्रिय की वृत्ति आसुर, असुर को दबाने के लिए देवता लोग ने किया, सत्कर्म करके इनको दबाएंगे, और सत्कर्म करते समय उनको उद्गीत अक्षर की उपासना के घ्राण इंद्र की दृष्टि से, रसन इंद्र की दृष्टि से अलग अलग करके तुम हमारे उद्गान करो, इसे कह करके और करते हैं। प्रत्येक इंद्र में कल्याण, रूप, रस, गंध, ग्रहण आदि में अभिमान के कारण दैवी देवताओं की वृत्ति को आसुर वृत्ति पाप से संबंध कर देते, पाप युक्त होने के कारण अभी सब इंद्रियों में सुगंध दुर्गंध जैसे दो हुआ, ऐसे रूप से जो दर्शनीय जो दर्शन करने नहीं योग्य वो भी देखता है, शब्द श्रवण इंद्र से जो अच्छा शब्द सुनता है, कोई गाली गुलो जो अशब्द विभत्स शब्द अवरुद्ध शब्द वो भी सुनता है। इसी प्रकार समय पाप युक्त होने के कारण अच्छा बुरा दोनों ग्रहण होता है, एक साथ मंत्र आ गई। अथ वाच मुद्गितम उपासांच क्रीरे ताहासुरा पापमना विविधोस् तस्मा तयो भयं वदति सत्यं चानृतं च पापमना हेसा विद्धा। अभी वाघ इंद्र उद्गित की उपासना, वाघ इंद्र की दृष्टि से उसकी सब उपासना की, ताह आसुरा ता वाघ इंद्रियों को आसुरा पाप से वेद डाले, क्योंकि वाघ इंद्र से कुछ शब्द अच्छा बोलते हैं, उसी अभिमान में सब शब्द सुंदर शब्द बोलता हो। अच्छा, ये अभिमान के कारण पाप से युक्त कर दिए। ये होने से क्या हुआ? तस्मात पाप से युक्त होने से तया उभयम बदती मनुष्य उसी बाघ इंद्र के द्वारा दोनों बोलता है। दोनों कौन? सत्यंच अनृतंच। सत्य भी बोलता है और मिथ्या भी बोलता है। क्यों? वो बाघ इंद्र पाप से युक्त हो गया। पहले सत्य भाषण करते हुए अभिमान हुआ, अब आसुरों को पाप से बेद डाला। अब पाप युक्त हो जाने के कारण अभी भी चल रहा है, सत्य भी बोलता है झूठा भी बोलता है। अनृतंच क्यों ऐसा हुआ? पाप मना ऐसा विद्ध यही यस्मात ऐसा बाघ पाप से विद्ध हो गया, पाप से संबद्ध हो गया। अथ चक्षुर उद्गितम उपासांच क्रीरे तद्धासुरा पाप मना वे विदुस्तस्मातेन वयं पश्यति दर्शनीयंच अदर्शनीयंच पापना हे तद विद्धम। इसी प्रकार चक्षु उद्गित चक्षु दृष्टि से उपासना तो सब देवता के चक्षु को तुम हमारे लिए उद्गान करो। तद्धासुरा पापना वे वो भी अभिमान हो गया, मैं कल्याण रूप दर्शन करता हूँ। चक्षु इंद्र के द्वारा भगवान मूर्ति तीर्थस्थान महापुरुष सबका दर्शन होता है, मैं रूप दर्शन करता हूँ, थोड़ा अभिमान हुआ। ये अभिमान उसका देख करके थोड़ा कमजोरी देख करके असुर लोग पाप से संबंध कर दिया। पाप युक्त होने जाने के कारण तेन उभयम पश्यत मनुष्य पाप युक्त हो जाने से दर्शनियम चर्शनियम च दर्शन करने योग्य को कहते दर्शनियम। जो दर्शन करने योग्य नहीं है, नहीं देखना चाहिए, उसको भी देखता है चक्षु इंद्रिय के द्वारा, क्योंकि पाप से विद्ध हो गया। अथ श्रोत्र उद्गितम उपासान चक्रीरे तद्धासुरा पाप मना भी विदुस्त तस्मातेन उभय श्रृणोती श्रवणियम चाश्रवणियम च पापमना हे तद विद्धम। इसी प्रकार श्रोत्र इंद्र श्रवण इंद्र के दृष्टि से उद्गित की उपासना, सब देवता ने कहा श्रवण इंद्र से आप उद्गान करो, तो इनके श्रवण इंद्र से शब्द ग्रहण होता है, अच्छे शब्द ग्रहण होता है, उसका अभिमान हो गया। मैं शब्द ग्रहण करता हूँ, वेद मंत्र आदि श्रवण करता हूँ, मेरे शब्द ग्रहण करने का सामर्थ्य, और किसके पास सामर्थ्य? और कोई इंद्र ग्रहण करता है नहीं, श्रवण इंद्र के सब प्रत्येक इंद्रिय में अलग अलग सामर्थ्य। जो चक्षु इंद्र से रूप ग्रहण होता है, और किस इंद्र में सामर्थ्य? इसी प्रकार सब इंद्र का अलग अलग सबके पास है, किन्तु अभिमान हो गया मैं शब्द ग्रहण करता हूँ, और कौन ग्रहण करता है? चक्षु क्या है? मैं रूप ग्रहण करता हूँ, और कौन ग्रहण करता है? ग्रहण इंद्र में क्या? हम गंध ग्रहण करते हैं, और कौन करता है? सब ऐसे करके अभिमान, ये अभिमान दे करके असुर लोग पाप से भेद डाले। जहां थोड़ा अभिमान आ गया, असुर वृत्ति आकर उसको दबा देते, ऊपर आके दबा दिया, और पाप से संबंध हो गया। देखो, पाप कर नहीं करे, अप्रमत्त रह करके दूर रहे, पाप हो जाने के बाद उसको निवृत्ति करना, और क्या करना? पाप हो गया तो निवृत्ति, कहीं प्रायश्चित आदि विधान है, विधान ठीक ठीक से हो पाए नहीं हो पा रहे, तो वो लग गया तो लग गया। जैसे वस्त्र अच्छा है उसमें कुछ लग गया, कोई ऐसे फल रस आदि अनार आदि रस निकल गया, कोई नारियल पानी गिर गया तो गिर गया, उसके बाद साफ कर साफ नहीं होगा। महिला आ गया, पाप आ गया तो छोड़ाना मुश्किल है। कोई पाप कर्म कर लिया तो पापी हो गया, चोर एक बार चोरी कर लिया तो चोर चोर कहते जीवन भर चोर, चोरी करने से इसे उससे दूर रहना है। दूर से आगे संबंध नहीं हो, पाप से संबंध नहीं हो, सन्मार्ग मिश्रित चलना होता है। खाली समय जो रहते हैं अवश्य ही इधर उधर मन चिंतन होता है, पाप चिंतन राग द्वेष होता है। खाली समय रहने वाले क्या करेंगे? राग द्वेष करना पड़ेगा, दूसरे की चिंता है, दूसरे का व्यापार, यही करते करते कौन क्या करता है, ये चिंतन, ये सब जो खाली रहता है तब ये सब चिंतन होता है। अपने ध्यान भजन इसमें करेंगे तो दूसरे चिंतन है कि अपने खाने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो दूसरे चिंतन क्या करेगा? जो अपने कुछ काम है, जो काम व्यवसाय भी करते हैं अपने कर्म में, उसमें जो लगे रहते हैं, दूसरे को चिंतन करने का कहां समय है? कि बहुत लोग ऐसा होता है, संवाद जानना सुनना चाहते तो भी पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, अपने काम खाने के लिए भी समय नहीं मिलता है। इसी प्रकार इस सन्मार्ग में लगने वाले इसमें पठना श्रवण विचार ध्यान जप पूजा अपने कर्म करे, बाकी समय इसमें लग गया तो बाहर कहां जाएगा? नहीं तो ये मन उसको रखना बड़ा कठिन है, बहुत इधर उधर भागता है। इसलिए कहीं भी मन को खाली नहीं रह करके सन्मार्ग में लगाना ये कर्तव्य है। तो इसलिए क्या हुआ? श्रवण इंद्र जो सुनने योग्य सुनता है, जो नहीं सुनने योग्य उसको भी सुनता है, पाप से युक्त हो गया। अतः मन उद्गितम उपासान चक्रे तद्धासुरा पाप मना विदुस्त स्मातेन उभयम् संकल्पयते संकल्पनीयम् चासंकल्पनीयम् च पाप मना हि तद्विद्धम्। उसके बाद मन को, मन को उद्गित उद्गित की उपासना मन की दृष्टि से मन उद्गाता बन गया। उपासना कर से हो तो मन में भी कुछ थोड़ा थोड़ा अपने विषय ग्रहण में कुछ आ, मन सब इंद्र के स्वामी है, कोई भी इंद्र व्यापार करता है मन उसमें कारण मन पूर्वक होता है। मन यदि नहीं है, मन कहीं है, आंख खोला है सामने दिखेगा नहीं, कान खोला है मन कहीं चला गया तो शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। कोई भी इंद्र से कुछ करे तो मन उसमें कारण है, तो अभिमान उसका हो जाएगा, मैं सब इंद्र का मालिक हूं। कुछ थोड़ा अभिमान हुआ, अभिमान दे करके जहां अभिमान थोड़े शुरू हुआ पाप वहां आकर के, पाप आसुर वृत्ति कलिग युग का प्रारंभ हुआ वहां भी ऐसे हुआ। कली काल जब प्रारंभ हुआ, कली के दूत आकर के साम्राज्य स्थापन करने के लिए आए, जहां जाते हैं वेदांत विचार वेदांत श्रवण पूजा पाठ आदि कली का प्रवेश नहीं होता है। वापस गए कली महाराज जी के पास, गए हम साम्राज्य स्थापन नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रवेश नहीं होता, हम जब जाते हमारा बल क्षीण हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते पीछे आ जाते हैं, ऐसे होता सामर्थ्य ही न हो जाता है। जैसे बहुत अग्नि प्रज्वलित है, आप जाओगे तो थोड़ी दूर से गर्म लग जाता है, आगे नहीं जा सकते पीछे हटेंगे। इसी प्रकार उनसे कड़ी फिर उनको बताया तुम जाओ ऐसे रूप वेश बना करके, ठग वेश बना करके लोगों को ठगाओ और अशास्त्रीय मार्ग में चलाओ। सब लोग जब अशास्त्रीय मार्ग पर चलेंगे तो हमारा साम्राज्य स्थापन होगा। इसलिए शास्त्र विरुद्ध मत में चलाने वाले ये कली के दूत है, हुआ करके गुरु बन करके शास्त्र विरुद्ध मत में चलाते हैं। अभी बहुत शुरू हुआ, आगे बढ़ेगा, बहुत मत है शास्त्र के विरुद्ध, ऐसे लोग है वेदांत के नाम कहेंगे, पूजा पाठ नहीं करो, दीप नहीं जलाओ, मंदिर नहीं जलाओ, दान नहीं करो, सब निषेध करेंगे। ऐसे करने वाले अभी भी है, बहुत सुंदर बोलते हैं, लोग उनसे प्रभावित हो, क्योंकि लोग तो पहले पूजा पाठ नहीं करते, सत्संग नहीं करते, दान पुण्य करना नहीं चाहते, जब उसको बोलते कहते बहुत अच्छा गुरु मिल गए, बहुत खुश होते हैं, उनको फिर धन देने लगे जाते हैं। ये भी लोग आए, और जने नहीं रखने वाले कितने कितने सब बहुत विपरीत शास्त्र विरुद्ध मत में चलाने वाले, ऐसे बहुत बड़े अच्छे महापुरुष है किंतु अशास्त्रीय उपदेश करते हैं। अशास्त्रीय उपदेश करने से सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है, कहते जो कहते हो ठीक होगा, उस मार्ग में चलते हैं, चलेंगे तो अशास्त्रीय मार्ग पर चले तब कली का प्रवेश होगा। घर में अपवित्र जो आजकल सीखते हैं बाहर से, शुद्धि जो पहले परंपरा है, पिता पितामह प्रपितामह परंपरा, थोड़ा विचार कर देखे सबके ऋषि मुनि परंपरा है, सबके ऋषि गोत्र आदि से विचार करो, हमारा अमुक गोत्र भरद्वाज कहीं सांडिल्य कहीं गोत्र है, उनकी परंपरा में सब है, सब परंपरा ऋषि महर्षि के कुल में है, पूरा परंपरा में देखो कितने पवित्रता थी। और व्यवसाय करने वाले अभी भी आप सुने होंगे, कोई आप लोगों के में पिता पितामह प्रपितामह कोई एक नंबर करते थे, कोई दो नंबर नहीं करते थे, शुद्ध कमाई करते थे, परिश्रम करे कमाई करना, कहीं रुपया बहुत मिल जाता है कोई व्यवसाय नाम से, वो उसको नहीं पसंद करते, हम भी देखे वो मना करते, बच्चे को ये काम में नहीं करो, वो जो क्या क्या सब करते है ये मना करे, नहीं अपने कमाई करो, परिश्रम कर करो, परिश्रम करके जो कमाई करो वही हमारे को फल देगा। और कमाई करते तो खर्च व्यर्थ खर्च नहीं करते, उसको सदुपयोग करते, ऐसा भी देखे व्यक्ति। वो मारवाड़ी थे कालकाट में, अभी वो समाप्त हो गए, स्वयं उनके लिए कहेंगे तो प्लेन से एक ट्रेन में एसी आदि टिकट बना करें, हमको ऐसे ही साधारण टिकट कर दो, हमको उसमें अच्छा लगता है, कहें प्लेन में नहीं जाएंगे, हमको बोलते हैं डर लगता है, ऐसे बोल देंगे बच्चे हो गए, नहीं ऐसी कहेंगे बोले उससे हमको बंधन लगता है, नहीं चाहिए हमको। आकर के ऋषि के समय आएंगे, वो बच्चे आएंगे आकर के बोलेंगे देखो तुम्हारे पास कितने समय बच गया, शीघ्र आ गए क्या है, और हमारे पास बच गया थे कितने रुपया, तुम हमारे लिए टिकट करते तो कितने खर्च होता, अभी हमारे इतने रुपया बचा, देखो हम क्या करते हैं, तुम कहते ना हमको कंजूस, हम कंजूस नहीं, रोज जाएंगे अन्न क्षेत्र में महात्मा लाइन लेकर खड़े होते, रोटी लेने वाले फल लेकर जाएंगे, सबको फल दो, कहीं बिस्कुट दिया कहीं फल दिया, फल में महात्मा लोग कहा खरीदेंगे खाने के लिए, जिनको कुछ रोटी मांग कर लेते हैं, तो देखे तो कितने दिन तक हमें फल बांटा, कैसे महात्मा खुश होकर लेते, देखो बच्चे को सिखाते देखो तुमने इसे बर्बाद किया रुपया, तो प्लेन से आ गए थोड़ा एक दिन पहले आ गया, मैं आने में दो दिन लगा, आखिर तुमने क्या कमा लिया, क्या कर लिया, क्या हो गया, आखिर सोया टीवी देखा पेपर पढ़ा, ये किया, तो हम आकर के देखो इसे आए और रास्ता में ट्रेन में आए, वहां भी भगवान का नाम लेते रहते आए और यहां आकर देख करते, तो करने वाले इसे करते, धन का सदुपयोग करना ये भी है, ये जो दुरुपयोग होता ना ये भी आसुरी प्रवृत्ति है, बहुत ऐसे चल गया कि बाहर जा करके शादी किया तो विवाह किया तो बाहर जाकर 10-20-50 लाख खर्च करेंगे अब आकर के बताएंगे तो बेकू बनकर खर्च करके आएंगे, मूर्ख बनकर सबको कहे मैं इतने खर्च किया वहां गया अब बड़े बड़े पट्टू लेकर दिखाएंगे क्या लाया, यही लाया कुछ नहीं, तो पट्टू तो कभी कितने देखा है, ऐसे चलता है। तो ये होता है अशास्त्रीय वृत्ति होने पर कली का प्रवेश होता है, शास्त्र मार्ग से विपरीत मार्ग में चलने वाले चलाने वाले संसार उसमें जितने हो सकता है शास्त्रीय मार्ग अपने परंपरा पिता पितामह प्रपितामह के थोड़े परंपरा उनके बारे में थोड़े सुने होंगे उसको आदर्श रखकर चले, किस आदर्श पर चले जिसके कारण आप अभी इस प्रकार है, आप अभी जिस स्थिति में है उसके कारण आपके पिता प्रपितामह पितामह प्रपितामह उनके तपस्या उनके तपस्या से उस मार्ग में चल करके अभी आगे बढ़े, इसको भूलना नहीं चाहिए, उनके प्रति अपना कृतज्ञता उसी से आगे बढ़ते हैं। इसे पितरों को भी अर्पण करना होता है और देवताओं को ऐसे करना है, तभी मन भी हर गया, मन भी ऐसे हो गया वो लेकर पाप में डाल दिया, इसे मन क्या करता है अभी जो संकल्प करना चाहे करता है, जो संकल्प नहीं करना चाहे वो भी करता है, पर दोष नहीं देखना चाहिए, पर अनिष्ट चिंता नहीं करना चाहिए, निंदित निषिद्ध चिंता नहीं करना चाहिए, किन्तु मन ही कर लेता है, किस लिए करता है क्योंकि पाप मना है ऐसा विद्ध पाप से विद्ध हो गया, इसे उभय संकल्प करता है जो संकल्पनीय जो असंकल्पनीय, सब जब हार गए अंत में अभी मुख्य प्राण मुख्य में होने वाले जो प्राण है, अथ एवाय मुख्य प्राणस्तम उद्गीतम उपासांच क्रीरे तम हासुरारित्वा विदध्वंसुर्यथास्मानमाकण मृत्वा विध्वंसेतैवम्। मुख में होने वाले जो मुख्य प्राण है उसकी उपासना की उद्गीत की उपासना मुख्य प्राण दृष्टिया, यहां जो प्रकरण चल रहा है प्राण दृष्टि से उद्गीत की उपासना करना है, और प्राण जो समष्टि प्राण वही हिरण्यगर्भ है उसी दृष्टि से उद्गीत ओंकार की उपासना करनी है, मुख्य प्राण की उपासना इसे करने से क्या हुआ, उपासना करने से असुर लोगों का तो ये अभ्यास हो गया था, जाकर तुरंत असुर पाप से वेद डालते थे, प्रत्येक इंद्रिय अपने कल्याण गुण ग्रहण में आसक्ति के कारण उनका थोड़े देख करके कमजोरी असुर जाकर उसका पाप संबंध करते थे, और जब मुख्य प्राण शुरू किया असुर दौड़े क्या करने के लिए, अपने पाप वेदन करने के दौड़े दौड़े तो क्या हुआ, आसरादित्व जा करके विदध्वंस ध्वंस हो गए नष्ट हो गए, किसी प्रकार मिट्टी के ढेले लेकर पत्थर को जोर से फेंको, मिट्टी के एक ढेला उसके लेकर पत्थर को तोड़ने के लिए फेंको जोर से, पत्थर थोड़ा फट जाएगा ना और क्या होगा मिट्टी चुन्न हो जाएगी इधर उधर, इसी प्रकार अश्व दौड़े पहले आदत हो गई ना सब को लेकर पाप में वेद डालते थे, अब यह देखा नहीं उनके कमजोरी कुछ नहीं है किंतु अभ्यास हो गया था दौड़ कर पाप डालना दौड़ कर पाप डालना, दौड़ कर जो वहां गए ध्वंस हो गए नष्ट हो गए, तम विध्वंसुर किस प्रकार यथा अस्मानम आखनम रित्वा विध्वंसित, अस्माय पत्थर आखन जिसका खनन नहीं हो सकता है, बड़े लोहा छिद्र घन आदि के द्वारा ही खनन करना कठिन है, अब मिट्टी के ढेला फेंगे तो क्या होगा, इसी प्रकार ध्वंस हो गए, इसी प्रकार असुर वृत्ति समाप्त हो गए, प्राण विशुद्ध है, प्राण विशुद्ध होने से क्या हुआ और असुर उसको कुछ नहीं कर पाया, तो मुख्य प्राण यथा अस्मान आखन मृत्युआ विध्वंसत एवं हैव स विध्वंसते यह एवं विधि पापम कामयते यस्येनम अभिदास्यति स एष अस्माखण, जिस प्रकार पत्थर को जाकर के मिट्टी का ढेला आखण पत्थर का विशेषण है जिसका खनन नहीं होता है, बड़े बड़े छेनी लेकर के कुदाल लेकर के सावल लेकर के भी खनन नहीं कर सकते, वहां मिट्टी का ढेला का ध्वस्त चूर्ण हो जाता है, इसी प्रकार ऐसा जो प्राण को भी असुर कुछ नहीं कर पाए, जो प्राण उपासना करता है प्राण बुद्धि से ओंकार की उपासना करता है एवं विधि पापम कामयते, इसी प्रकार उपासक में जो अनिष्ट चिंतन करता है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात तो कोई उपासक अच्छे उपासक भक्त ज्ञानी सन्मार्ग में चलने वाले उसके प्रति को अनिष्ट चिंतन करता है निंदा करता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है, इसलिए किसी की निंदा तो करनी नहीं चाहिए, कभी भी किसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, हमको पता नहीं वो उसके में क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या उपासना करता है, देखकर पता चलेगा? शरीर को देखकर पता नहीं चलेगा कोई भी उसमें क्या क्या गुण है, क्या सामर्थ्य है। ऐसे जो उपासना करने वाले उसकी यदि कोई कुछ कामना करता है कुछ, तो उसके तिरस्कार कर लिया अथवा कुछ ना कुछ कटु शब्द कह दिया, ऐसे कहने वाले में पाप लगता है, वो समय में से नष्ट होता है। श्रुति कहती ये चयनम अभिदासती, जो हिंसा करता है, कष्ट देता है, खाली कुछ अनर्थ करने के लिए इच्छा करता है अथवा कटु शब्द कह करके अथवा शरीर से किसी प्रकार कष्ट देता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये तो पत्थर जैसे है, मिट्टी ढेला उसको क्या करेगा, इसे उपासना करने वाली सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य के कारण जो उसका विरुद्ध में कुछ चिंतन करता है, उस कटु वचन कहता है, हिंसा करता है, निंदा करता है, वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। नैवे तेन सुरभिच दुर्गंधि बीजानात्यपह तपापमा हे सब तेन यदश्नात यत विवति तेन इतरान प्राणानवति एतम इवान्ततो वित्वात् क्रामति व्याददात्येवन्तत इति तेन नैव एतेन सुरभि। मुख्य प्राण से सुरभि न दुर्गंधि बीजानाति, मुख्य प्राण से विपरीत ग्रहण नहीं होता है। सब इंद्र में सुगंध दुर्गंध श्रवणीय अश्रवणीय संकल्पनीय असंकल्पनीय सब कुछ हो गया, मुख्य प्राण किसी दोष से युक्त नहीं होता है। मुख्य प्राण के द्वारा सब इंद्र का व्यापार होता है, किंतु प्राण के साथ किसी दोष का संबंध नहीं होता है। न सुगंधि न दुर्गंध न श्रवणीय शब्द किसी के नहीं ग्रहण होता है। इसलिए जो पुरुष भी सब ग्रहण करता है, मुख्य प्राण केवल व्यापार के लिए कारण, उसके साथ किसके साथ संबंध नहीं होता है। क्योंकि अपहत पापमा है सब, ये पाप से रहित है, शुद्ध है मुख्य प्राण। क्योंकि इसमें अन्य जो इंद्रिय है अपने विषय ग्रहण करते, उनको कहते आत्मम भरी। एक होता अपना भरण करता है, अपना भरण पोषण करने वाला आत्म भरी, और एक होता सर्व का, सबका भरण पोषण करता है। कोई एक व्यक्ति सर्व का भरण पोषण करता है, एक होता आत्म भर। एक परिवार अभी मिले, बहुत परिवार 40 से 5 भाई सब मिलकर रहते, कोई एक बहुत परिश्रम करता है, सब लोग एक साथ है, सब लोग खर्च करते, कई सब लोग भोजन बनाने वाला स्थान अलग, सामग्री के साथ रख लेते, कोई कुछ करते, सब एक साथ खर्च होता है। ये होता है गृहस्थाश्रम में स्वर्ग हो जाता है, सब मिलकर प्रेम से रहते हैं। उसमें ये नहीं था कोई अधिक कमाता है तो परिवार वाले सब उसमें खर्च करते, दान पुण्य करो, सब करो, कहा बड़े खुश है, जितने प्राप्त होता है संतोष है। उसके बाद उस सेवा भी करते हैं, यज्ञ दान आदि करते, बहुत कुछ करते, किन्तु सब मिल करके प्रसन्न है। जो एक व्यक्ति कमा करके सब को भरण कर सकता है, वो सर्वम भर हुआ। जो स्वयं अपने पेट भरण कर, उदरम भर हुआ, अपने पेट भरण करता है। प्राण और अपने बाकी इंद्रिय, इनमें विशेषता देखो। एक प्राण सारे इंद्रिय के व्यापार के लिए कारण, प्राण से ग्रहण होता है, अन्न ग्रहण होता है, सबकी रक्षा करने वाले प्राण, सबकी रक्षा करने वाले प्राण के साथ अन्य इंद्र का विवाद आगे भी है। विवाद में प्राण जो निकलने लगे, कोई इंद्र नहीं रह सकता, सब उठ भाग जाएंगे। सारे इंद्र व्यापार के प्राण मुख्य कारण, मुख्य हो गया प्राण, सर्वम भर, सबका भरण पोषण करता है। और प्रत्येक इंद्र अपने अपने विषय ग्रहण करके अपने अभिमान करते थे, किन्तु मुख्य प्राण है, ये पाप रहित है। ये तेन यद अस्नाति यद विभति तेन इतरान प्राणानवती, इसी प्राण के द्वारा मनुष्य जो खाता है पीता है, खाने पीने के लिए भी प्राण कारण, जो खाता पीता रहते है तेन इतरान प्राणानवती, अन्य प्राण की रक्षा करता है। अन्य प्राण अन्य इंद्रिय, खान पान भोजन करने प्राण से ग्रहण होगा, पचन होगा, तार सारे इंद्रिय की पुष्टि होती है, इंद्रिय से व्यापार होता है। यदि अन्न पान नहीं होगा तो अन्य कोई इंद्रिय व्यापार नहीं कर सकता है, अन्य कोई इंद्रिय नहीं रह सकते, सबकी रक्षा करता है। ये तेन इतरान प्राण, अन्य प्राण की रक्षा करता है, इसलिए प्राण सबसे श्रेष्ठ हुआ। अन्य इंद्रिय श्रेष्ठ नहीं है, प्राण मुख्य हो गया, मुख्य प्राण। क्योंकि अन्य सब हो गया आत्मम भरी, अपने भरण पोषण करने वाले, युगा सर्वम भर, इसलिए अत्यंत विशुद्ध हुआ। अंत में यही प्राण भोजन करता है, सब की स्थिति होती है। एतमु एवं तत्व अभित्वा उत्क्रामति, उस अंत समय में जो उत्क्रमण मर जाता है अलब्ध्वा, जो अन्य अंत में सब इंद्रिय प्राण के बिना कोई इंद्रिय नहीं रह सकती, सब चल जाते हैं। प्राण भी अपने खाद्य ग्रहण नहीं प्राप्त कर सकता है तो मर जाता है, तो मुख खुल जाता है। प्राण के द्वारा अन्न खान पान होता है, ग्रहण करना होता है, अंत में मुख्य प्राण चला गया तो अन्न ग्रहण नहीं हो पाता है, फिर प्राण मुख खुल गया और मुख्य प्राण जाते ही उसके साथ क्या जाते तो तुरंत, तो अन्य प्राण विवाद में अन्यत्र आएगा। इसमें भी एक एक इंद्र बाहर जाते तो कुछ आपत्ति नहीं, किंतु जो मुख्य प्राण जाने के तैयार हुआ तो सबको अपने स्थान छोड़ने लगे, स्तुति करने लगे, आप नहीं जाओ, आप श्रेष्ठ हो, आप जाएंगे तो हम नहीं रह सकते। ये लाल बंदर होते हैं ना, और डराते छलांग नहीं लगाते, इसे डराते हैं, लगता है जैसे छलांग लगाकर ऊपर आ जाए, ऐसे सर ऐसे कर देते हूं करके, देखा है लाल बंदर है ना, कोई देखे तो ऐसे कर डराएंगे, ऐसे करेंगे जैसा कि छलांग लगा दिया, डर जाते हैं। इसी प्रकार मुख्य प्राण जाता हूं मैं जाता हूं करके तो करते ही सब लोग डरने लगे, नहीं नहीं आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ, मुख्य प्राण जाएगा तो इंद्रिय कहां जाएगी, इंद्रिय सो भरी जाएंगे। इसलिए एवं अंत तो अभित्व नहीं प्राप्त करके अन्न नहीं मिलने से पुरुष जो प्राण चला गया मुख खोल देता है। यही प्राण भोजन करने की इच्छा है, जब मुख खोल देता है ये उसका लाभ है, अन्न लाभ नहीं होने के कारण मुत्क्रमण हो गया, प्राण अन्न लाभ नहीं कर पाया, अन्न लाभ नहीं करता है, मुख खोल दिया फिर प्राण चला गया, सो चलेगी। अब ये प्राण हो गया मुख्य श्रेष्ठ हुआ, यहां तक तो जो आख्यायिका है प्राण किस प्रकार श्रेष्ठ बताया। अभी ओंकार उद्गीत की उपासना मुख्य प्राण दृष्टिया, जैसे शालग्राम की उपासना विष्णु दृष्टिया करते हैं, ओम इस अक्षर की उपासना परमात्मा दृष्टिया भी करते हैं और प्राण दृष्टिया। प्राण शब्द से तो व्यस्ति प्राण अलग अलग है, समस्त प्राण होता है उसके अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ, उसको प्राण शब्द से कहा जाता है। हिरण्यगर्भ है समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी देवता, समष्टि प्राण उसको कहते, उसकी उपासना अहम अस्मि से उपासना करें, तब बुद्धिया ओंकार की उपासना, ओंकार में प्राण दृष्टि करके ओंकार की उपासना, ओंकार की परब्रह्म दृष्टि उपासना भी परमात्मा दृष्टिया और हिरण्यगर्भ दृष्टिया भी ओंकार की उपासना। विराट बुद्धि से उपासना पहले आ गया, पहले विराट रूप से उपासना करे, कल आया था बृहदारण्य के में अश्वमेध में स्वयं विराट रूप बहुत चिंतन करे, और यहाँ प्राण दृष्टि से उपासना। ये प्राण दृष्टि उपासना करते समय पहले मैं ये देह स्थूल शरीर नहीं हूं, प्राण रूप में पहले चिंतन करे। जब प्राण भाव निकलता है आता है समस्त प्राण के साथ व्यस्ति प्राण की एकता, देह एक उपाधि के कारण परिच्छेद हो गया, देह के अंदर प्राण बाहर प्राण है, एक ही प्राण सबके अंदर बाहर है। जिस प्रकार एक ही आकाश सबके अंदर बाहर है, ऐसे समस्त प्राण हिरण्यगर्भ उसकी उपाधि प्राण रूप उपाधि सर्वत्र समान रूप से है। यही प्राण उपाधि सबको मिला दिया, व्यष्टि अलग अलग है और सबको मिला दिया तो समष्टि हो गया। समष्टि जल एक एक बिंदु है, सारे मिलकर समुद्र, सारे समष्टि प्राण मिलकर के उसकी उपाधि होगी, तद उपाधि का आत्मा है हिरण्यगर्भ। वो हिरण्यगर्भ एक ही चेतन है, वही देवता अलग अलग 33 करोड़ देवता वही हो जाता है, अंत में वही एक ही है। सारे व्यष्टि देह में अहम बुद्धि छोड़ करके समष्टि प्राण में हूं ऐसे चिंतन यदि हो जाए, ये अभ्यास करते चिंतन करने से ऐसे होता है। प्राण स्वरूप है, पहले अपने प्राण में चिंतन करे, उसके बाद ये प्राण निकलता है श्वास ग्रहण करते उसके साथ अपने मिल जाए, उसी श्वास वायु के साथ मिल करके समष्टि प्राण के साथ एक हो जाए, देह में अहम बुद्धि छोड़ करके समष्टि प्राण में ही हूं। आगे भी आएगा संवर्ग विद्या आदि बहुत उपासना है, यही प्राण उपासना कहेंगे, तो ये प्राण की उपासना। अभी इसके लिए कुछ स्तुति के लिए है, तंग हांगिरा उद्गितम उपासान चक्र ए तमु एवांगिरा समन्यन्ते अंगानाम यदरस। अंगिरस नाम को ऋषि हुए, उद्गितम इसके उपासना के, ए तम उ एव अंगिरस ये अंगों का रस है, मन्यन्ते मानते हैं, ओंकार अंगानाम यदरस ये अंगों का रस है। पहला आया रसानाम रसतम अष्टम उद्गित रस बताया था, रसतम गुण कहा गया था याद है, ये सारे भूतों के पृथ्वी रस पृथ्वी आप रस ऐसा कह करके व्याघ्रसक होकर अंत में उद्गित हो गया रसतम। तो ये रसतम गुण है, ऐसी चिंतन करेंगे कि आगे कहेंगे बक दालव्य है। अलग अलग ऋषियों ने ऐसे उपासना किया, प्राण उपासक हुआ, अलग अलग ऋषियों ने ऐसे उपासना करके वही प्राण समस्त रूप है। प्राणो ह पिता, प्राणो माता इत्यादि कहा, सर्वात्मक प्राण। तेन तंग ह बृहस्पति रुद्गितम उपासान चक्र एतम एव बृहस्पति मन्यन्ते वाघी बृहति तस्यायसपति। इसको बृहस्पति दृष्टि से उद्गित की उपासना की, ये प्राण ही बृहस्पति है ऐसा मानते हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या है, वाघ ही बृहत, वाघ को बृहत कहा गया, बृहति और बृहत एक छंद है, जैसे गायत्री अनुष्टुप छंद बृहत एक छंद है, वही वाघ रूप है। तस्यायसपति बृहति छंद के प्रति प्राण, सारे छंद के लिए पति प्राण है, प्राण से छंद का संपन्न होता है, इसे इसको प्राण को बृहस्पति भी कहते हैं। तेन तंग हायास्य उद्गितम उपासान चक्र ए तम एवायास्य मन्यंत आस्याद अयते। ए तंग तंग ए तेन तंग ह आयास्य उद्गितम उपासान आयास्य आयास्य नाम आस्याद अयते इति आयास्य आस्य मुख आस्याद अयते अयगति निकलता है मुख्य से आस्य अय करके आयास्य बना दिया आस्य अय करके दोनों मिला करके का आयास्य आस्याद अयते अय को पहले रख दिया आस्य आयास्य उद्गित उपासना एतम आयास्य मन आयास्य कहते क्योंकि आस्याद यद अयते मुख से निकलता है जिस प्रकार उपासना है ऐसे उपासक अपने आप को मैं ही अंगिरस प्राण उद्गित आयास ऐसी चिंतन करे। तेन तंग हवको दाल्भ्य विदांचकार स नैमिष्यानामुद्गाता बभुव स स्मेभ्य कामाना गायति। बक नाम का दल्भ के अपत्य दाल्भ्य हुए थे, उन्होंने इसे उपासना की, उपास विदांचकार उपासना करके स नैमिष्यानाम उद्गाता बभुव उपासना करके सत्र करने वाले सब मिल करके याग करते कहते सत्र, जहां सब ऋत्विक लोग यजमान बन करके कोई यजमान के यज्ञ करते हैं ब्राह्मण आकर के, जहां सब ऋत्विक लोग मिल करके एक कर्म करते हैं सत्र करते, सारे ब्राह्मण मिल करके करते सत्र बहुत दिन से होता है, ऐसे सत्री में उद्गाता हुआ था यही बकदालव्य। ये प्राण उपासना के सामर्थ्य से उनके पास ही सामर्थ्य रहा, सह कामान आगायति स्म एभ्य, सारे उद्गाता के लिए जो जो फल चाहते हो सब फल प्राप्त करा दिया प्राण उपासना के सामर्थ्य से। जैसे समस्त प्राण उपासना करता है अपने सर्वात्मक प्राण हो जाता है, सारे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और यो जो चाहता है दूसरे को प्राप्त हो जाए अन्य को भी प्राप्त करा देता है, इसलिए ऐसे उपासना करे समस्त प्राण बुद्धि से ओंकार की उपासना, हिरण्य गर्भ दृष्टि से उपासना। आगाता हो वही कामाना भवती ये तदिव विद्वान अक्षर मुद्गितम उपास्त इति अध्यात्मम। आगात आगान के द्वारा प्राप्त करा देता है कामाना आगाता, काम्य वस्तु को काम शब्द से कहते, काम शब्द इच्छा भी है और काम्यंत इति कामा विषय, जितने विषय सब को प्राप्त कर देता है आगान करके, उद्गित साम वेद का ज्ञान मंत्र करके प्राप्त करा देता है कर्म में। ये एतदेव विद्वान अक्षरम उद्गितम उपासते, ऐसा जो विद्वान उद्गित अक्षर ओंकार की उपासना करता है सारे काम की प्राप्ति होती है, और जो चाहता है दूसरे को प्राप्त करा देता है, उपासक में सामर्थ्य आता है। और ये सर्वत्र भूलना नहीं, फल तो कहा गया, और जो इसे फल नहीं चाहता है वो परमात्मा प्राप्ति का साधन अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। फल तो सर्वत्र कहेंगे, फल सुन करके लोभ नहीं होना चाहिए कि हम इसे करें तो हमको सब फल मिल जाए, फल है चाहने वाले फल प्राप्त करेगा, नहीं चाहने वाले उपासना करने में कोई आपत्ति नहीं, करने से उसे परमात्मा ही है, सारे कर्म उपासना अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसलिए ये उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान के लिए उपदेश करने के पहले भी ये कुछ उपासना कहते हैं, ऐसे उपासना करने पर बुद्धि की शुद्धि होती है। सब छोड़ करके परब्रह्म अद्वितीय परब्रह्म मैं हूँ ऐसा चिंतन करने के पहले देह परिच्छेद को छोड़ करके समस्त प्राण चिंतन करे, विराट रूप चिंतन करे, व्यष्टि भाव को छोड़े, परिच्छेद भाव को छोड़े, एक अद्वितीय तत्व है, एक अद्वितीय चिन्ह मात्र का प्रतिबिंब अनेक अंतकण में दिखता है। बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक है, आप चेतन बिंब रूप चेतन ही है जो अंदर बाहर एक ही है, किंतु भेद दिखता है प्रतिबिंब में, दोष त्रुटि वही है। अपने स्वरूप जो बिंब रूप परिपूर्ण चिन्ह मात्र है, जानते हम चेतन जड़ नहीं है, होने पर भी चेतन स्वरूप को नहीं जान करके जड़ में अहमबुद्धि हो जाती है, अंतकर्ण के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, अंतकर्ण के संबंध से क्रम से देह आदि के साथ संबंध हो जाता है, और फिर देह को दिखाते मैं। स्वरूप के अज्ञान के कारण मिथ्या वस्तु में अहमबुद्धि होती है। ये परिच्छेद भाव को छोड़ना ही है, उपासना करते करते परिच्छेद को छोड़ना, भक्ति करते करते ये शरीर को पूरा पूरा समर्पण करते हैं, पूरा पूरा प्रणाम नमस्कार करते सब शरीर को उनके चरण में अर्पण कर दिया। अपना कुछ नहीं आपका ही है, जो अपना कुछ मैं कुछ हूं मेरा कुछ ऐसी भावना है तो समर्पण नहीं हुआ। ये आगे बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, ये याज्ञवल्क्य के महर्षि उपदेश करते है, जनक सम्राट श्रोता है, उपदेश सुनते कैसे दान देते है, अंत में जब उपदेश प्राप्त होता है पूरा अपने को समर्पण कर दिया, राज्य आपका है, मुझे भी मेरा भी स्वीकार कीजिए, दास भाव से मुझे नौकर बनाए, ऐसे सम्राट पहले तो अपने स्थान में बैठ कर सुनते फिर छोड़ कर जाते उनके चरण में बैठ करके उपदेश ग्रहण करते हैं। तो ये होता है सब अपना समर्पण पूरा, देह में अहमबुद्धि छोड़ना, इसके लिए ही सारे साधन है। शुद्ध चिन्ह मात्र के ज्ञान हो जो व्यापक है, उसके लिए उसके पहले विराट रूप समष्टि प्राण रूप हिरण्य गर्भ रूप ये स्वरूप चिंतन करने पर व्यापक दृष्टि व्यापक भावना, एक ही प्राण भावना यदि हो जाए तो सर्वत्र परमात्मा सर्वत्र हुई है, सर्वत्र परमात्मा सब कहते हैं, मानते भी जानते हैं, फिर भी ऐसी दृष्टि नहीं होती है। जैसे मंदिर में भगवान की दृष्टि उपासना होती है, ऐसे कहीं कहीं परमात्मा दृष्टि तुरंत एक क्षण में कैसे कोई किसी में निकृष्ट किसी में दुर्गुण दिखता है, किसमें कैसे हो जाता है, कहाँ कहाँ इतने विलक्षण है, जो सुनते हुए जानते सर्व वासुदेव सर्वम भगवान कहते, सर्वम खलिदम ब्रह्म सब जानते, श्या राम है सब जगह जानी कहते, हाथ से प्रणाम भी करते किन्तु उसमें भी भेद दिखता है, भेद बुद्धि नहीं जाती। इसलिए श्रौत उपासना इसमें श्रद्धा हो, इसी प्रकार सोचे श्रवण करते थोड़ा उसके जरिए से सोचे विचार करे उसके द्वारा भी उपासना अच्छी हो जाती है। अब यहाँ ये उपासना यहाँ पहले यहाँ तक हुआ इति अध्यात्मम, अध्यात्म देह में किस प्रकार ये ओंकार अक्षर की उपासना समष्टि प्राण विद्या करे, उसके बाद देवता में उपासना करना है। अथाधि दैवतम ये वासु तपति तम उदितम उपासित उद्यन वा ऐसा प्रजाभ्य उद्गायते उद्यन तमो भयम अपहंत्यपहंता हवे भय शतम सभवती य एवं वेद। देवता में य एव असो तपति जो तपाता है आदित्य बन करके सूर्य वही उद्गीत है, अर्थात आदित्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना करे। उद्गीत ओंकार है, ओंकार की उपासना करना क्या दृष्टि करके, आदित्य सूर्य नारायण भगवान दृष्टि से उपासना करे। उद्गीतम उपासित उद्यन वे ऐसा प्रजाव्य उद्गायती, ये आदित्य उद्गीत कैसे होगा, आदित्य तो सूर्य है उद्गीत कैसे होगा, कहते उद्यन जब उदय होते हैं उद्यन प्रजाव्य उद्गायती, सूर्य जब उदय होते हैं प्रजा के लिए उद्गान करते हैं, सूर्य उदय होने पर प्रजा को अन्न मिलता है, सूर्य के उदय समय के बिना सूर्य ताप नहीं दे तो ब्री आबादी अन्न उत्पन्न नहीं होगा, उपजाव नहीं होगा। जो सब अन्न आज भोजन करते हैं, कोई खेती करता है, सूर्य ताप की आवश्यकता है, सूर्य ताप उदय होकर के सब के लिए उद्गान करते, सब को अन्न प्रदान करने के लिए प्रतिदिन उदय होकर के उद्यन उद्गायती प्रजान अन्न उत्पत्ति के लिए। क्योंकि सूर्य उदय नहीं हो तो वीर्यवादी नहीं होगा, इसलिए उनका नाम उद्गित हो गया। उद्गान करते अर्थ हुआ उद्गित सविता। और केवल इतने नहीं, उद्यन तमो भयम अपहंती, सूर्य उदय होकर अंधकार को नष्ट करते हैं और अंधकार के कारण जो भय उसको भी नष्ट करते हैं। रात में होने वाला अंधकार और अंधकार में भय होता है, भयम प्राणियों के भय होता है, इसको भी सूर्य उदय होने पर नष्ट करते हैं। अंधकार में भय होता ही है, दिन में सब प्रकाश हो गया तो भय नष्ट होता है। तब तो सूर्य नारायण उद्गित है, अर्थात तो उद्गित अक्षर में सूर्य दृष्टि करके उपासना करे। यही उद्गित क्यों, कि वही तो अन्न देने वाले और अंधकार को, रात में होने वाले अंधकार को नष्ट करते, भय नष्ट करने वाले, ऐसे गुण वाले सूर्य, इनकी उपासना करें। उपासना करने से क्या लाभ होगा, अपहंता हई भय से तमस भवती है वेद, जो इस उपासना करता है वो भय नष्ट कर देता है। अपहंता भय से, भय यहाँ क्या है, जन्म मरणादि लक्षण जो भय है उसको नष्ट कर देता है। ऐसे उपासना करेगा तो स्वयं हिरण्यगर्भ रूप हो जाएगा, जन्म मरण आदि दुखों को नष्ट कर लेता है, नष्ट हो जाता है अपना, और उसका कारण तमह का नाश करेगा। तमह अज्ञान, अज्ञान को भी नष्ट कर देगा। निष्काम अनुष्ठान करेंगे आगे ज्ञान प्राप्त करेगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो जन्म मरण आदि भय भी नष्ट हो जाएगा। सबसे भय यही है, चोर व्याघ्र आदि भय क्या करेगा, वो कुछ भय नहीं, भय तो यही है जो जन्म मरण, एक बार व्याघ्र खा लेगा। किन्तु ये जो संसार भय, जन्म मरण आदि भय, कितने करोड़ करोड़ बार हो गया, अभी प्रमाद करते आगे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा फिर यहां पहुंचने के लिए। एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त किया, हाथ से छूट गया, फिर अपने हाथ तो नहीं कि फिर मिल जाएगा, आज नहीं तो काल जाएंगे, ये तो हो जाता, आज नहीं तो काल आएंगे, सत्संग में आज चलो कल आ जाएंगे। किंतु एक बार मनुष्य जन्म चला गया तो अगले जन्म फिर मनुष्य बन जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, यहाँ आ जाएंगे, ये संभव नहीं होता है, एक बार हो तो चल जाता है। इसलिए ऐसे जन्म मरण आदि भय सबसे बड़ा भय, इसको नष्ट कर लेता है, अज्ञान नष्ट होता है, तो यही मुख्य फल है। ओंकार अक्षर की उपासना, पहले ईश्वर परमात्मा बुद्धिया उपासना, और रसतम आप्ति समृद्धि गुण विशिष्ट गुणजित उपासना, और प्राण बुद्धिया उपासना, समस्त प्राण बुद्धिया उपासना, और यहाँ क्या है, सूर्य बुद्धि से, सूर्य दृष्टि से उद्गित है उपासना, उपास्य ही उद्गित, अनेक दृष्टि से उपासना करनी है। जिस प्रकार परमात्मा का हम उपासना ध्यान करते हैं, हे तो परमात्मा एक शुद्ध अद्वितीय चिन्ह मात्र है, उसके ज्ञान होना चिंतन करना कठिन होता है, इसलिए हम किस रूप से किस नाम से परमात्मा को सामने रखना चाहते हैं उपासना करने के लिए, इसलिए नाना अवतार हुआ, नाना रूप हुआ, अनेक रूप हमारे पंचदेव उपासक एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं। इसमें आएगा एक ही हिरण्य गर्भ, वही 33 कोटि देवता हो जाते हैं, व्यक्ति अलग अलग है किंतु वास्तव एक ही है, वही सब अलग अलग रूप से दिखते हैं परमात्मा। जब जिसका जो नाम जो रूप अच्छा लगता है उस रूप से चिंतन करे, कोई आपत्ति नहीं, उपास्य तो ही परमात्मा, फल देने वाला भी वही है, नाम रूप अलग अलग है, रुचि नाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल अधिकार, सब अपने अपने रुचि है, किसको कोई रुचि रूप अच्छा लगता है, किसको कोई नाम अच्छा लगता है, जिसको जो नाम अच्छा लगता है, जो रूप अच्छा लगता है, चिंता न करो, किंतु उपास्य परमात्मा है। इसी प्रकार यहाँ ओंकार अक्षर उपास्य है, और परमात्मा का वाचक है, नाम है, और प्रतीक है, जैसे शालग्राम प्रतीक है, प्रतीक अलग वाचक अलग, वाचक होता है नाम, और प्रतीक होता है उसके चिन्ह, शालग्राम उसका नाम नहीं विष्णु भगवान का, वो प्रतीक है। इसी प्रकार यहाँ ओंकार प्रतीक है, परमात्मा का चिन्ह है, परमात्मा जैसे उपास्य है, जैसे शालग्राम विष्णु भगवान का प्रतीक है, सो ओंकार पर ब्रह्म का प्रतीक है, और वाचक नाम है, जैसे उनका नाम विष्णु है, नारायण है, इस प्रकार यहाँ उनका नाम ओंकार है परमात्मा का। ओंकार सबसे श्रेष्ठ प्रतीक है और उत्कृष्ट नाम है, वेद में कहा गया, उसी इसमें अलग अलग गुण युक्त करके उपासना करे। रसतम आपती समृद्धि गुण वाला कह दिया, वही विराट रूप है, वही समस्त प्राण हिरण्यगर्भ रूप है और वही आदित्य होकर के ही सारे सबको अन्न देते है, सबका अंधकार भय नष्ट करते हैं। अर्थात जो उपासना करेगा वो भी इस प्रकार अपना अंधकार अज्ञान को नष्ट कर देगा। अज्ञान जन्य भय संसार जन्म मरण आदि को भी नष्ट कर लेता है जो इसे उपासना करता है। इस उपासना के साथ थोड़ा सा उसकी तुति के लिए कह देते समान एवायम चास्नो चास्नो अयंच उष्णो अयम अस्नो असौ स्वर इति एवं आचख्यते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम तस्मात् वायेतम इमं अमुं चोद्गितम उपासित समान उ एवायम चासौ चौष्णो अयम उष्णसु स्वर। समान ही दोनों बराबर है प्राण और सविता सूर्य, सूर्य और प्राण समान है, प्राण के समान सूर्य, सूर्य के समान प्राण। असौ च उष्ण अयम उष्ण, सूर्य भगवान तो उष्ण स्पर्श वाला है, ये प्राण भी उष्ण है, प्राण चल जाते तो शरीर ठंडा हो जाता है। और उष्ण असौ स्वर इति इमं आचख्यते, इसी प्राण को स्वर कहते हैं, शब्द करता है स्वर कहते हैं। और प्रत्यास्वर इति अमुम आदित्य को कहते प्रत्यास्वर। ये प्राण को स्वर क्यों कहते हैं? प्राण निकल गया, निकल गया तो स्वरत एव गच्छति एव, फिर नहीं आता है, इसे स्वर स्वरति गच्छति इति स्वर। और सूर्य है प्रत्यास्वर, एक बार उदय होकर अस्त हो गए फिर उदय होते हैं या नहीं होते हैं? प्रत्यास्वर बार बार आते हैं, एक बार चले गए फिर क्या लोग देंगे, फिर चले गए फिर क्या लोग देंगे, इसे सूर्य हो गया प्रत्यास्वर। और प्राण क्या हो गया? स्वर। प्राण निकल गया तो गया, जब हम श्वास प्रश्वास छोड़ते प्राण पूरा नहीं निकलता है, पूरा निकल गया तो गया, स्वर तेव रक्षतेव फिर नहीं आता है, इसे इसको कहते स्वर। किन्तु आदित्य को कहते प्रत्यास्वर। अब वो भी उष्ण ये भी उष्ण, ये जिसने उस प्रकार, इसी प्रकार ये सूर्य दृष्टि से प्राण दृष्टि से भी उद्गित की उपासना है। अथ खलु व्यानम एव उद्गितम उपासित यद वे प्राणिति स प्राण यद अपानिति सो अपान अथ य प्राणापान संधि स व्यानो यो व्यान सा वाक तस्माद प्राणन अनपानन वाचम अविव्याहरति। व्यानम एव उद्गित उपासित, ये उद्गित व्यान दृष्टि से उपासना करे, प्राण पान व्यान सब कुछ उद्गित है। यद वे प्राणिति स प्राण, जब प्राण श्वास का ग्रहण करते छोड़ते हैं, जब श्वास की गति इस प्रकार ये प्राण है और इस प्रकार गति तो उसका नाम अपान, प्राण अपान, प्राण अपान। यद वे प्राणिति स प्राण यद अपानिति स अपान, वो नीचे जाने पर अपान वायु कहते हैं, किन्तु अपान वायु के द्वारा भोजन करते नीचे जाता है, यहां से ही उसका व्यापार। अथ यह प्राणापान संधि, श्वास लेना नहीं छोड़ना नहीं, बीच में रोक देना, सव्यान यो व्यान सा वाक, जो वान है सा वाक, वाक उच्चारण करते श्लोक मंत्र आदि पाठ करते समय चलता रहता है, बीच में श्वास प्रश्वास लेना नहीं छोड़ना नहीं, बोलते समय जो जाता है तो इसे उच्चारण करेंगे तो वाक उच्चारण करते समय दोनों को रोक करेंगे। तस्माद अप्राणन अनपानन च वाचम अभिव्याहरति, अभिव्याहरति का उच्चारण करते प्राण ग्रहण त्याग श्वास प्रसार नहीं करके ही, प्राण पान व्यापार नहीं करके ही शब्द उच्चारण किया जाता है। लंबा बोलते जाएंगे तो बीच में श्वास लेना छोड़ना नहीं, जो नहीं कर पाते हैं बीच में श्वास लेना पड़ता है, ये तो लगातार इसे करना है। इसी प्रकार या वाक सर्क तस्मात प्राणन अनप्राणन ऋषम अभिव्याहरति, यर्क तस्साम तस्माद प्राणन अनपानन साम गायति, यह साम सउद्गित तस्माद प्राणन अनपानन उद्गायति। इसी प्रकार जो वाक है, ये प्राण को कह दिया ज्ञान को कह दिया वाक, या वाक सारी की, जो वाक है उरी के पहले आया था, तस्माद प्राणन अनपान ऋचम अभिव्याहरति, ऋचा श्लोक मंत्र जो बोलता थे प्राण पान बंद कर करते या रिक तस्म, जो रिक है शाम, क्योंकि ऋचा में शाम को आरूढ़ होकर ज्ञान करते है, तस्मात अप्राणन अनपानन शाम गायती, शाम गान करते समय भी प्राण अपान व्यापार नहीं करके गान करते है,
यह साम स उद्गित और उद्गित साम ही है, साम के एक अवयव उद्गित वही ओंकार है। तस्माद अप्राणन अनपानन उद्गायति, जो उद्गान करते हैं साम वेद गृति उद्गान करते है साम गान करते है बीच में प्राण अपान व्यापार नहीं करते हैं। अतो यान अन्यानि विधेयंती कर्माणि यथा अग्नेर मंथनम आजेद शरणम दृढ़ सदन सायमनम अप्राणन अनपानन स्थानि करोत्येतस्य हेतुर्व्यानमेव उद्गितम उपासित। अन्य जो विधेयत सामर्थ्य युक्त कर्म करते हैं जैसे अग्नेर मंथनम, मंथन कर अग्नि प्रकट करते हैं, काष्ठ में काष्ठ लेकर मंथन करके अरण्य मंथन कर प्रकट करते है, तो श्वास बंद करके मंथन कर लगे पूरा। मैंने देखा जो अरहर के दाल उसके इतनी लकड़ी रखेंगे थोड़ा छेद करके थोड़ा पेंसिल बनाकर ऐसे कर दे, ऐसे मंथन करके देखते अग्नि प्रकट हो जाता है। तो यज्ञ करते समय करते थे हम भी, प्रयास करते थे हाथ गर्म हो जाता नहीं कर पाते थे, जो परिश्रम करने वाले वो मजबूत है, हम इसे करे तो हाथ गर्म इतने अग्नि हो जाएगा तो छोड़ देंगे, किन्तु वो ऐसे करते 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 अग्नि प्रकट हो जाती है। तो और जो काम हम वीरवते आज शरणम, कोई सीमा है दौड़ना है तो जोर से दौड़कर जाना है, सांस बंद कर शीघ्र पहुंच जाते हैं। ये सब दृढ़ धनुष, धनु को खींचना है तो सांस बंद करके करेंगे, सावले उठाना है कुछ सांस बंद करके, कोई भारी पदार्थ उठाना है रोक करके उठाना से उठेगा, और सांस पसार लेंगे तो कमरे में कहीं पकड़ लेगा, बहुत लोग ऐसे होता है सांस पसार लेते झुकर कुछ किया पकड़ लिया बात पकड़ लिया औसत का ये बयान हो गया। ये है तो इसलिए बयान उद्गित, ये उद्गित व्यान की दृष्टि से उपासना करे, ऐसे उपासना मुख्य प्राण करके आगे कहेंगे ये उपासना हुआ। अभी उद्गित में अक्षर उद्गित इत्यादि अलग अलग शब्द कथन करके उपासना बताएंगे, ये प्राण उपासना। इसके बाद अंत में अभी अच्छा आगे उद्गित उपासना समाप्त होने पर फिर अच्छा विषय आएगा। ये इसमें अंतस्तद धर्म उपदेशात ब्रह्म सूत्र है, ये अंदर पर ब्रह्म किस प्रकार है इसका आगे उपदेश है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।